मेरा नाम मरे ग्रीन है, पुरुष, अविवाहित। शायद मैंने सही तरीके से ट्रांसमाइग्रेट किया, या शायद ये स्वर्ग का मुआवजा था, लेकिन मैं, जो मूल रूप से एक 996 कार्यालय कार्यकर्ता था, वास्तव में एक कुलीन का बेटा बन गया। फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होकर मरे ग्रीन ने अपने सामने एक अपरिचित चेहरे को देखा, सुंदर और आकर्षक, आसमान की तरह साफ और चमकदार नीली आंखों वाला, लंबे काले बाल और होठों पर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव। उससे एक युवा आभा निकल रही थी, यह उसका वर्तमान शरीर था।
अगर मैं इसी चेहरे के साथ उस दुनिया में वापस चला गया, तो मेरी एक दिन में दो से कम गर्लफ्रेंड नहीं होंगी। उसके बगल में खड़ा एक पुरुष सेवक उसके कॉलर को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे मरे की गर्दन अनायास ही सीधी हो गई। वह लंबा और गर्व से खड़ा था, कढ़ाईदार सोने के कुलीन वस्त्रों का पूरा सेट पहने हुए, हर तरह से सुंदर युवा स्वामी की तरह दिख रहा था। युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह पोशाक उपयुक्त है? उत्कृष्ट, मरे ग्रीन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी छाती और पेट को दबाया, तो पाया कि दर्द गंभीर नहीं था। एक सप्ताह से भी अधिक समय पहले, जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था।
मरे ग्रीन और उनके बड़े भाई शिकार के लिए निकले थे, लेकिन अचानक उनका सामना जादुई जानवरों के एक झुंड से हुआ। जादुई जानवरों द्वारा हमला किए जाने के कारण मरे गलती से अपने घोड़े से गिर गए।
वह घोड़े के खुरों से भी कुचला गया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और वह मौत के कगार पर पहुंच गया। कुछ समय के लिए उसका दिल भी रुक गया था। आह, एक सप्ताह से अधिक समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद, कुछ दर्द के अलावा, मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। आज, मैं अपने बेडरूम में अकेले खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ भोजन करने के लिए हॉल में जाऊंगा।
एक सप्ताह के एकीकरण के बाद उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि वे बाहर निकलें और इस दुनिया के साथ तालमेल बिठा लें।
उसकी योजना सुनकर पुरुष सेवक ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा,
लॉर्ड काउंट और लेडी काउंटेस आपको भोजन कक्ष में देखकर निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए काउंटेस ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उपचारात्मक जादुई औषधि की कई बोतलें परिष्कृत की हैं।
हम, इतनी सारी हड्डियां टूट गईं और सिर्फ एक सप्ताह में ही सब कुछ ठीक हो गया, जैसी कि माँ द्वारा परिष्कृत जादुई औषधियों से उम्मीद की जाती थी।
जैसे ही वह बोला, मरे ग्रीन की आंखों में उत्साह और कट्टरता झलक रही थी। तकनीक की उसकी मूल दुनिया के विपरीत, इस दुनिया में युद्ध, आभा और जादू था। ये ड्रैगन और जादुई जानवरों वाली एक अद्भुत दुनिया थी।
उनकी माँ काउंटेस एक अद्भुत जादूगरनी थी, उनके पिता महान लॉर्ड काउंट एक योद्धा थे, और उनके बड़े भाई भी एक योद्धा थे। जहां तक उसका प्रश्न है, यद्यपि अब वो एक साधारण व्यक्ति था, फिर भी उसका भविष्य उज्ज्वल था। नौकर की मौजूदगी में मरे ग्रीन ने नहा धोकर अपना काम निपटाया और अपने बेडसाइड टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने दराज खोली और एक नाजुक लकड़ी का बक्सा नजर आया। उसने लकड़ी का बक्सा खोला और देखा कि कोने में टेस्ट ट्यूब के आकार की कांच की बोतल में हरा तरल भरा हुआ था। बोतल में तरल पदार्थ हल्का चमक रहा था, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी।
आखिरी जादुई औषधि, उसने बड़बड़ाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के हरे रंग की जादुई औषधि उठाए और ढक्कन हटा दिया। पौधों की एक ताज़ा खुशबू फैली। इस सुगंध को सूंघने से उसे ताजगी और स्फूर्ति महसूस हुई और उसके शरीर का दर्द काफी कम हो गया। जादुई औषधि का स्वाद पहले तो साफ पानी जैसा था, लेकिन इसे पीने के बाद इसका स्वाद मीठा था। फिर मरे को अपने पेट में गर्माहट महसूस हुई, जैसे वसंत की हवा घायल क्षेत्रों को छू रही हो, और दर्द जल्दी ही खत्म हो गया।
हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने उपचारात्मक जादुई औषधि पी थी, लेकिन प्रत्येक खुराक के बाद का प्रभाव हमेशा मरे को चकित कर देता था। ये बस बहुत ही जादुई था, जिसने मरे ग्रीन को जादू और युद्ध आभा के बारे में और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। वह कमरे से बाहर निकलकर धुंधले गलियारे से होते हुए मुख्य हॉल में पहुंचा। हॉल के सबसे पीछे ग्रीन परिवार के पिछले मुखियाओं की 7 तस्वीरें टंगी हुई थीं। बीच में एक बहुत बड़ी लंबी मेज थी, और उस लंबी मेज के ऊपर एक जादुई क्रिस्टल लैंप था जो छत से 8 लोहे की जंजीरों से लटका हुआ था। हालांकि ये जादुई क्रिस्टल लैंप जलाया नहीं जाता था, इसे केवल दावतों या महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए ही जलाया जाता था। इस जादुई क्रिस्टल लैंप का उपयोग करने से जादुई क्रिस्टल की बड़ी मात्रा खर्च होती थी, यहां तक कि एक अमीर काउंट के परिवार के लिए भी। वे आमतौर पर मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे और अक्सर इस जादुई क्रिस्टल लैंप का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस समय 3 लोग पहले से ही लंबी मेज के चारों ओर बैठे थे। एक लंबा, मोटा, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसकी पूरी दाढ़ी थी, कुलीन वस्त्र पहने हुए मेज के सिरहाने बैठा था, बिल्कुल सातवें चित्र जैसा दिख रहा था। उसके बाईं ओर हल्के नीले बालों और आंखों वाली एक खूबसूरत युवती थी। उसके दाईं ओर एक लंबा, सुंदर युवक था। ये तीनों उसके पिता, माँ और बड़े भाई थे। जैसे ही मरे ग्रीन पहुंचे, तीनों ने अपनी निगाहें उनकी ओर घुमाई। इन तीनों की निगाहों का सामना करते हुए मरे ने गहरी सांस ली, ये सोचते हुए कि उसे इस बाधा को पार करना ही होगा। उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया, मूल शरीर की यादों के अनुसार झुककर उनका अभिवादन किया। सुप्रभात पिताजी, माताजी, बड़े भाई। उसका अभिवादन सुनकर उसके पिता और मां ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसका बड़ा भाई राइन ग्रीन खड़ा हुआ और जल्दी से उसके पास चला गया, मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसे अपने कंधों पर रख दिया। सुप्रभात मरे, आपका शरीर कैसा है? ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। माँ की जादुई औषधि सचमुच चमत्कारी है, ये सभी बीमारियों को ठीक कर देती है। मरे ग्रीन ने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया, जो कि एक अच्छे सुधार का संकेत था, फिर जल्दी से अपने बड़े भाई के साथ लंबी मेज पर चला गया, उसके पास बैठ गया, अपना चाकू और कांटा उठाया और अपने सामने चांदी की प्लेट को देखा।
प्लेट पर एक पैन फ्राइड स्टेक था और उसके बगल में एक गिलास दूध था। पैन फ्राइड स्टेक को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक जादुई जानवर शेडो लेपर्ड का मांस था। ये शेडो लेपर्ड ही वो अपराधी था जिसने मरे ग्रीन को घायल किया था।
उस समय यह अन्य जादुई जानवरों के नीचे छिपा हुआ था और अचानक हमला किया, जिससे मरे ग्रीन गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इसे क्रोधित राइन ग्रीन ने मार डाला, जिसने मरे ग्रीन को अपने शरीर को पोषण देने के लिए इसका मांस खाने को कहा।
हालांकि जब उसकी नजर अपने पिता और बड़े भाई की प्लेटों पर पड़ी तो उसने उन पर पके हुए स्मोक मीट का एक बड़ा टुकड़ा देखा। इसे चखे बिना भी ये सूखा और नमकीन लग रहा था। हालांकि उसकी माँ की प्लेट में बर्फ की तरह सफेद क्रीम ब्रेड के 2 टुकड़े और अंगूर के जूस का एक गिलास था।
चलो खाते हैं। ये देखकर कि पूरा परिवार मौजूद है, उसके पिता ने ये वाक्य कहा, फिर दोनों हाथों से पका हुआ स्मोक मांस उठाया। अपनी उंगलियों को हल्के से दबाकर उसने सख्त स्मोक मांस को टुकड़ों में फाड़ दिया, फिर एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और जल्दी से चबाया।
राइन ग्रीन ने भी ऐसा ही किया। मरे ग्रीन को अपने दांतों में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपने होठों को हिलाया, अपना सिर नीचे किया और चाकू और कांटे से स्टेक को काटना शुरू कर दिया। लॉर्ड काउंट एक सख्त सैन्य व्यक्ति थे, यहाँ तक कि घर पर भोजन करते समय भी वे सैन्य राशन खाते थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में भविष्य के लॉर्ड काउंट राइन ग्रीन ने सख्त आवश्यकताओं के तहत प्रशिक्षण लिया। मरे ग्रीन के लिए अपनी माँ की विनती की बदौलत वो इस तरह के शैतानी प्रशिक्षण से बच गया। उसे केवल बुनियादी प्रशिक्षण ही मिला, अन्यथा उसकी प्लेट पर स्टेक की जगह भी स्मोक मीट परोसा जाता। उसके पास अपने पिता और बड़े भाई के समान अच्छे दांत नहीं थे कि वह पूरी तरह से अप्रसंस्कृत कठोर स्मोक मांस खा सके।
मरे ग्रीन ने काउंटेस और अपने बड़े भाई राइन ग्रीन के सवालों का जवाब देते हुए नाश्ता किया। अपने शरीर की यादों के साथ उसने सामान्य से थोड़ा अधिक चुप रहने के अलावा कोई दोष नहीं दिखाया और उसे विश्वास था कि वह जल्द ही इस परिवार में एकीकृत हो जाएगा।
छोटे मरे, कल तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, हम तुम्हारे लिए एक भव्य वयस्कता समारोह आयोजित करेंगे।
अभी भी वह खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी एक कोमल आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसकी माँ क्रीम ब्रेड खाते हुए उसकी ओर देख रही थी। उसकी हल्की नीली आंखें पानी की तरह कोमल थीं, जिससे मरे का दिल कांप उठा।
यद्यपि वह इस दुनिया में केवल एक सप्ताह से अधिक समय से ही था, अपनी उस माँ के सामने जो उससे बहुत प्यार करती थी, मरे ग्रीन अभी भी उसकी गहरी देखभाल महसूस कर सकता था।
वह 16 वर्ष का हो रहा था। जिस दुनिया से वह आया था उसके विपरीत इस दुनिया में 16 वर्ष की आयु को वयस्कता माना जाता है।
इस दुनिया के शोध के अनुसार ये बैटल ऑरा के संपर्क में आने और जादू सीखने के लिए भी सबसे उपयुक्त उम्र है। कल तुम वयस्क हो जाओगे, बाद में राइन तुम्हें ग्रीन फैमिली कलेक्शन रूम में ले जाएगा ताकि वह तुम्हारे वयस्क होने के उपहार के रूप में कोई संग्रहणीय वस्तु चुन सके। धन्यवाद पिताजी। ग्रीन फैमिली का संग्रह कक्ष 200 से ज्यादा सालों से मौजूद है, जिसमें परिवार के मुखियाओं द्वारा संग्रहित खजाने रखे गए हैं। केवल परिवार का मुखिया, परिवार का वारिस या परिवार के मुखिया की अनुमति वाले लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। मरे को लंबे समय से इस संग्रह कक्ष की चाह थी, लेकिन वह कभी अंदर नहीं गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आज अपने वयस्क होने के उपहार को चुनने के लिए अंदर जा सकेगा। इसलिए उसने जल्दी से अपनी प्लेट से स्टेक अपने मुंह में डाला और एक ही घूंट में दूध खत्म कर दिया। मेरा काम हो गया, अत्यधिक उत्साहित होकर वह राइन ग्रीन की ओर उत्सुकता से देखने लगा।
अपने छोटे भाई की उत्सुकता देखकर राइन ग्रीन ने हंसते हुए बेकन उठाया, उसे कुछ निवाले में खा लिया और चबाते हुए मरे ग्रीन को हॉल से बाहर ले जाकर संग्रह कक्ष की ओर ले गया।
संग्रह कक्ष के प्रवेश द्वार पर पूर्ण कवच पहने, कमर में तलवारें लटकाए हुए 2 पहरेदार बड़े दरवाजे के दोनों ओर खड़े थे। उन दोनों को आते देख उन्होंने तुरंत झुककर सलामी दी। भगवान के सबसे बड़े बेटे यंग मास्टर, दरवाजा खोलो, पिताजी चाहते हैं कि युवा मरे अंदर जाए और वयस्कता के उपहार का चयन करे।
राइन ग्रीन का आदेश सुनकर दोनों गार्डों को कोई संदेह नहीं हुआ। आखिरकार परिवार के वारिस के रूप में राइन को खुद संग्रह कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति थी, और यह भी नहीं कि वह हल्का मौखिक आदेश भी साथ लाया था। दोनों गार्डों में से प्रत्येक ने एक एक चाबी निकाली, उसे दरवाजे के छेद में डाला और एक साथ 2 बार घुमाया।
एक क्लिक की आवाज के साथ भारी दरवाजे में एक छेद दिखाई दिया। दोनों गार्ड एक साथ आगे बढ़े, दरवाजे पर हाथ रखे और एक साथ धक्का दिया। चरम चरम की आवाज के साथ भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला।
मरे ग्रीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, पाया कि अंदर घना अंधेरा था और वह अपने बगल में खड़े अपने बड़े भाई को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं जाना, ये कहते हुए राइन ग्रीन आगे बढ़े और मरे ग्रीन भी तुरंत उनके पीछे पीछे संग्रह कक्ष में प्रवेश कर गए। संग्रह कक्ष बिल्कुल अंधेरा था, इतना अंधेरा कि वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मरे ग्रीन थोड़ा हैरान हुए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, एक स्विच की हल्की क्लिक की आवाज हुई और पहले से अंधेरा कमरा तुरंत प्रकाशित हो गया। अवचेतन रूप से उसने प्रकाश की ओर देखा और देखा कि एक जादुई क्रिस्टल लैंप, जो हॉल में लगे लैंप से बहुत छोटा था, छत से लटका हुआ था तथा शुद्ध सफेद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जिससे अंधेरा कमरा दिन जैसा उजला हो गया था। जादुई क्रिस्टल लैंप, यह सही है। संग्रह कक्ष में रखी वस्तुएं या तो अत्यंत कीमती हैं या बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंदर मशालों या मोमबत्तियों का उपयोग करने से इन संग्रहणीय वस्तुओं को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है और यह उनके संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए संग्रह कक्ष में एक जादुई क्रिस्टल लैंप भी स्थापित किया गया था। जैसे ही जादुई क्रिस्टल लैंप जला, रहस्यमय संग्रह कक्ष ने मरे के सामने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। पहली चीज जिसने उसकी नज़र को आकर्षित किया वह था पूरे शरीर के कवच के 6 सेट।
पूर्ण कवच के ये 6 सेट अलग अलग थे, कुछ तो अधूरे भी थे। कवच पर दरारें थीं और सभी पर तलवारों और कुल्हाड़ियों के वार के निशान थे।
ये स्पष्ट रूप से ग्रीन परिवार के उत्तराधिकारी परिवार के मुखियाओं के कवच थे। उनमें से प्रत्येक युद्ध के मैदान में एक भयंकर सेनापति था और ग्रीन परिवार के पास जो कुछ भी था वह उनके योगदान से उत्पन्न हुआ था। दोनों भाइयों ने आदरपूर्वक एक साथ सिर झुकाया। कवच के 6 सेट संग्रह कक्ष के बिल्कुल बीच में रखे हुए थे। उनके दोनों ओर कई अलमारियां और मेजें थीं जिन पर विभिन्न वस्तुएं रखी हुई थीं, तलवारें, भाले, एक हाथ वाली कुल्हाड़ियां, लंबे धनुष, कवच, कीमती सामग्री, जादुई छड़ियां। इन चमत्कारी वस्तुओं को देखकर मरे ग्रीन ने लापरवाही से पास की तलवार उठा ली। जादुई चिराग की रोशनी में तलवार चमक रही थी, साफ तौर पर बहुत तेज।
यह एक हाथ वाली तलवार थी, 4 अंगुल चौड़ी और 1.2 मीटर लंबी, लेकिन इसका वजन 2 हाथ वाली तलवार के बराबर था। इसलिए वह केवल दोनों हाथों से मूठ पकड़ सकता था और इसे हल्के से घुमा सकता था, जिससे हवा में कटने वाले तेज हथियार की आवाज पैदा होती थी। डाहल वन हैंडेड स्वॉर्ड, एक लेवल 5 हथियार, डाहल की निजी तलवार थी, जो एक महान योद्धा और डाकू था जिसने 50 साल पहले इस क्षेत्र को परेशान किया था। दादाजी ने उसे मारने के बाद इसे प्राप्त किया था। ये तलवार 1000 फोर्ज स्टील से बनाई गई है, जिसमें मैजिक आयरन और एडेमेंटाइन मिलाया गया है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से तेज है और मिट्टी जैसे लोहे को भी काटने में सक्षम है।
अपनी जीभ चटकाते हुए मरे ग्रीन विस्मय से भरे हुए शब्द को बोलने से खुद को नहीं रोक सके।
जैसा कि संग्रह कक्ष से खजाने की अपेक्षा की जाती है, केवल एक तलवार को उठाने से पता चला कि यह एक स्तर 5 का हथियार है जो एक महान योद्धा द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
उसने तलवार को वापस उसके स्थान पर रख दिया और फिर अन्य हथियारों को देखा। अंततः संग्रह कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसे सब कुछ देखना था और एक अच्छा खजाना चुनना था।
वह चलते और रुकते थे और जब भी मरे ग्रीन किसी हथियार में रुचि दिखाते, राइन ग्रीन एक पेशेवर गाइड की तरह उन्हें उससे परिचित कराते थे। चूंकि मरे ग्रीन जादूगर बनना चाहता था, इसलिए पास में पड़े कुछ हथियारों को देखने के बाद वह सीधे उस क्षेत्र की ओर चला गया जहां जादूगर की वस्तुएं प्रदर्शित थीं। सबसे पहले उसकी नज़र एक लकड़ी की जादुई छड़ी पर पड़ी जो करीब 1.3 से 1.4 मीटर लंबी थी। इस जादुई छड़ी को देखकर उत्सुक मरे ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया।
जादुई छड़ी का मुख्य भाग हल्के लाल रंग की लकड़ी और लाल क्रिस्टल से बना था। इसे हाथ में पकड़ने पर एक चिलचिलाती आभा निकली, जिसे देखकर मरे को बहुत आश्चर्य हुआ।
एक अग्नि जादू कर्मचारी, एक स्तर-2 कर्मचारी, एक अग्नि पत्ती के पेड़ की शाखाओं और एक अग्नि जादू क्रिस्टल से बना है। यह अग्नि जादू की शक्ति को बढ़ा सकता है।
अग्नि पत्ती का पेड़ एक जादुई पेड़ है जो उच्च तापमान वाले जलवायु में रहता है। गर्म वातावरण में इसकी पत्तियां आग की लपटों जैसी होती हैं। यही वजह है कि इसे अग्नि पत्ती का पेड़ कहा जाता है। जून और जुलाई में अग्नि पत्तियों को उगाने वाली शाखाओं में निहित अग्नि तत्व ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है, जिससे वे अग्नि तत्व जादुई वस्तुओं को बनाने के लिए आदर्श बन जाती हैं। कबूतर के अंडे के आकार के अग्नि जादुई क्रिस्टल को छूते हुए मरे ने इस छड़ी को नीचे रख दिया और दूसरी उठा ली।
ये पूरी तरह से नीला था, बहते पानी के पैटर्न से ढका हुआ था, 1 मीटर से भी कम लंबा था और पत्थर की सामग्री से बना था। ये छूने में चिकना और गर्म महसूस हुआ और हालांकि सामग्री पत्थर की थी, यह पानी की तरह रेशमी महसूस हुआ। ये बहुत आरामदायक था और मरे ग्रीन को लगा कि यह उनके लिए बहुत उपयुक्त है। एक जल जादू कर्मचारी, एक स्तर 3 कर्मचारी, पानी का पत्थर से जमीन, एक जल तत्व प्रवर्धन जादू सरणी के साथ अंकित। यह मन को शांत करने और जादू रिलीज को स्थिर करने का प्रभाव है और यह जल तत्व जादू कास्टिंग के लिए एक निश्चित प्रवर्धन प्रभाव प्रदान करता है। राइन ग्रीन ने परिचय देना जारी रखा, फिर मरे ग्रीन की हल्की नीली आंखों को देखा और कहा,
यह एक जादुई छड़ी होनी चाहिए जो आपकी विशेषता के लिए बेहतर हो। क्या आपने इसे चुना है? मैं और अधिक चारों ओर देखना चाहता हूँ। ग्रीन परिवार एक नया उभरता हुआ कुलीन परिवार है जिसका इतिहास सिर्फ 200 साल से ज्यादा पुराना है। इसकी नींव खास समृद्ध नहीं है। योद्धा वस्तुओं की तुलना में जादुई वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं।
इसके अलावा उनकी गुणवत्ता की तुलना नहीं की जा सकती। उच्चतम श्रेणी की जादुई वस्तुएं केवल स्तर 4 की छड़ें हैं जो उच्च स्तर के जादूगरों के लिए उपयुक्त हैं। योद्धा पक्ष के विपरीत, जहां अधिकांश स्तर 5 के हथियार हैं और यहां तक कि स्तर 6 के हथियार भी हैं। इस दुनिया में योद्धाओं और जादूगरों के लिए औपचारिक रैंक डिवीजन 10 स्तर हैं। योद्धाओं को योद्धा प्रशिक्षु, जूनियर योद्धा, मध्यवर्ती योद्धा, वरिष्ठ योद्धा, महान योद्धा, पृथ्वी योद्धा, आकाश योद्धा, सितारा योद्धा, युद्ध संत और युद्ध देवता में विभाजित किया गया है। जादूगरों को मैजिक अप्रेंटिस, जूनियर जादूगर, इंटरमीडिएट जादूगर, सीनियर जादूगर, ग्रैंड जादूगर, मैगस, आग जादूगर, ग्रैंड मैजिस्टर, स्पेल सेंट और स्पेल गॉड में विभाजित किया गया है।
निजी तौर पर प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। नव उन्नत, अनुभवी और परिपूर्ण 10 स्तर विस्तृत रैंक हैं, जिनमें रैंक प्रमाणन और रैंक पदक शामिल हैं।
3 स्तर व्यक्तिगत परिस्थितियों पर आधारित हैं, कुछ साधना प्रगति पर आधारित हैं, कुछ युद्ध शक्ति पर और कुछ पदोन्नति समय पर, इसलिए वे एक समान नहीं हैं, लेकिन वे अपरिहार्य हैं क्योंकि एक ही रैंक के भीतर भी महत्वपूर्ण असमानता है।
हथियार के स्तरों को उपयोगकर्ता के उस स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसे वे संतुष्ट कर सकते हैं। 4 स्तरीय हथियार और स्तर 5 के हथियार के बीच मूल्य का अंतर कई गुना है। इससे मरे कुछ हद तक असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए उपयुक्त जादुई वस्तु का चयन करें या जादूगर बनने की अपनी योजना को त्याग कर उच्च स्तरीय योद्धा हथियार का चयन करें। कुछ ही देर बाद मरे ग्रीन, जो जादुई वस्त्रों को देख चुका था, जादुई वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली आखिरी लंबी मेज के पास आया जहां कई बक्से रखे हुए थे।
ये आखिरी जादुई वस्तुएं थी जिन्हें उसने नहीं देखा था। यदि इन्हें देखने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक जादुई वस्तु नहीं मिलती तो उसे अपने भविष्य के करियर पथ पर विचार करना होगा। मरे ग्रीन ने सावधानीपूर्वक एक डिब्बा उठाया, उसे खोला और जब उसने उसमें रखी सामग्री देखी तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं तथा उसके चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया।
हे भगवान, क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसी चीज है?
आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने लकड़ी के बक्से से 30 सेंटीमीटर लंबी अजीब आकार की वस्तु निकाली जो 50 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी थी।
ये पूरी तरह से पीतल के रंग का था। इसकी सतह पर कई अजीब पैटर्न थे, आधा घुमावदार और आधा सीधा, जो दो भागों से बना हुआ प्रतीत होता था। सीधा हिस्सा एक बेलनाकार ट्यूब था जिसके अंदर लगभग एक उंगली मोटा छेद था। यह एक फ्लिंटलॉक बंदूक थी। यद्यपि यह पहली बार था कि मरे ने असली चीज देखी, फिर भी उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। बड़े भाई, यह क्या है? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा। राइन ग्रीन संग्रह कक्ष में सभी वस्तुओं से बहुत परिचित थे और मरे के सवाल का सामना करते हुए उनके बड़े भाई ने उन्हें निराश नहीं किया और तुरंत समझाना शुरू कर दिया।
यह एक मैजिक क्रिस्टल गन है, एक विशेष रूप से निर्मित बिना रैंक वाला मैजिक टूल। इसमें एक ट्रिगर है, इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है। मुख्य शरीर पीतल और लाल तांबे के मिश्रण से बना है और एक जादूगर ने इस पर एक सॉलिडिफिकेशन मैजिक एरे और एक शॉक एब्जॉर्प्शन मैजिक एरे उकेरा है जिससे इसकी संरचना बहुत मजबूत हो गई है। जब तक आप तांबे की ट्यूब में विशेष मैजिक क्रिस्टल पाउडर और एक तांबे की गोली लोड करते हैं, तब तक आप मानसिक शक्ति, जादुई शक्ति, युद्ध आभा का उपयोग करके या ट्रिगर खींचकर इसे फायर कर सकते हैं।
इसे फायर करने से मैजिक क्रिस्टल पाउडर में विस्फोट हो जाएगा, मैजिक एरे सक्रिय हो जाएगा और साथ ही तांबे की गोली बाहर आ जाएगी। इसकी शक्ति फायरबॉल मंत्र के बराबर है।
बोलते बोलते राइन ग्रीन ने लकड़ी के बक्से से दो खूबसूरत बक्से निकाले। उसने उन्हें खोला, एक में तांबे की गोलियां थी और दूसरे में कई छोटे कपड़े के थैले थे। उसने उनमें से एक उठाया, उसे खोला और मरे को थमा दिया। छोटे कपड़े के थैले को लेते हुए मरे ग्रीन ने देखा कि उसमें साफ और पारभासी मैजिक क्रिस्टल पाउडर था।
मैजिक क्रिस्टल गन के ठंडे आवरण को छूते हुए मरे ग्रीन का दिल हालांकि उत्साह से जल रहा था। कौन लड़का अपनी खुद की बंदूक नहीं चाहेगा, और यह एक मैजिक गन थी, दो दुनियाओं की शक्तियों का एक संयोजन। उसने सावधानीपूर्वक जादुई क्रिस्टल गन को पकड़ा, जल्दी से शेष बक्सों को देखना समाप्त किया और फिर अपने वयस्क होने के उपहार को चुना। राइन ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा विकल्प है। अब आपके लिए इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है। क्या आप इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाना चाहते हैं? मरे ग्रीन ने तुरंत सहमति दे दी। उसने मैजिक क्रिस्टल गन को ध्यान से लकड़ी के बक्से में वापस रख दिया, बॉक्स उठाया और राइन ग्रीन के पीछे पीछे संग्रह कक्ष से महल के पीछे प्रशिक्षण मैदान में चला गया। ग्रीन कैसल के पीछे का प्रशिक्षण मैदान दो भागों में विभाजित था, एक भाग सार्वजनिक प्रशिक्षण मैदान था जिसका उपयोग परिवार के गार्ड और गार्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग करते थे और दूसरा भाग निजी प्रशिक्षण मैदान था जिसका उपयोग ग्रीन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इस समय दर्जनों किशोर कई प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहे थे। दोनों को आते देख उन्होंने तुरंत अपनी हरकतें रोक दी और उन्हें प्रणाम किया।
प्रशिक्षकों का अभिवादन करने के बाद दोनों बिना रुके निजी प्रशिक्षण मैदान की ओर चलते रहे।
निजी प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही मरे ग्रीन ने योद्धा की पोशाक पहने अर्ल ग्रीन को अपना प्रशिक्षण रोककर बीच में खड़ा देखा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बिना धार वाली दो हाथ वाली बड़ी तलवार को अपने सामने जमीन में गाड़ दिया, अपने हाथों को मूंड पर रखा और आंखें मूंद कर उन दोनों को देखा।
पिता पिता, हम क्या आपने अपना वयस्कता उपहार चुन लिया है?
हाँ पिताजी, उपहार के लिए धन्यवाद, मैंने ये जादुई क्रिस्टल गन चुनी है। अर्ल ग्रीन के सवाल का सामना करते हुए मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के लकड़ी के बक्से से मैजिक क्रिस्टल गन निकाली और उसे अर्ल ग्रीन को थमा दी। अर्ल ग्रीन ने मैजिक क्रिस्टल गन ली और उसके हाथ पर एक लाल रोशनी दिखाई दी। यह अर्ल ग्रीन की युद्ध आभा थी।
जैसे ही बैटल ऑरा मैजिक क्रिस्टल गन में प्रवेश किया, मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे तुरंत सक्रिय हो गया और अजीब लाल पैटर्न अचानक इसकी सतह को कवर कर लिया, जिससे मैजिक क्रिस्टल गन फायर करने के लिए तैयार अवस्था में आ गई। दुर्भाग्य से ये लोड नहीं था और फायर नहीं किया जा सका।
एक जादुई क्रिस्टल गन, एक दिलचस्प छोटी सी चीज, एक जादूगर के लिए आत्मरक्षा हथियार। ऐसा लगता है कि आप भविष्य में एक जादूगर बनना चाहते हैं। अर्ल ग्रीन ने मुरे ग्रीन की ओर देखा। अर्ल ग्रीन की गहरी और गहरी निगाहों का सामना करते हुए मुरे ग्रीन थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसने अपनी हल्की नीली आंखें बड़ी करके उसकी नजरों से नजर मिलाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि अर्ल ग्रीन को काय लोग नापसंद थे।
हाँ पिताजी, मरे ग्रीन की आंखों में दृढ़ संकल्प को देखते हुए अर्ल ग्रीन ने सिर हिलाया और कहा, आपको पेनी की जल जादू की प्रतिभा विरासत में मिली है, इसलिए आपको वास्तव में जादूगर बनना चाहिए। याद रखें, अपनी माँ को निराश न करें।
मैं अपनी माँ का गौरव बनूंगी और मैं ग्रीन परिवार का भी गौरव बनूंगी। मैजिक क्रिस्टल गन को मुरे ग्रीन को वापस सौंपते हुए अर्ल ग्रीन ने ये शब्द सुनकर मुरे ग्रीन को कुछ आश्चर्य से देखा, यह महसूस करते हुए कि उनके सबसे छोटे बेटे का व्यक्तित्व उसकी गंभीर चोट के बाद बहुत मजबूत और अधिक मिलनसार हो गया था। आखिरकार उसके अपने खून का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जीवन और मृत्यु के महान आतंक का अनुभव करने के बाद बड़ा होना पूरी तरह से सामान्य था। उन्होंने प्रोत्साहन के संकेत के रूप में मुरे ग्रीन के कंधे को थपथपाया। मरे ग्रीन ने एक मेज ढूंढी, उस पर लकड़ी का बक्सा रखा, अपने दाहिने हाथ से मैजिक क्रिस्टल पाउडर का एक थैला उठाया, अपने बाएं हाथ से मैजिक क्रिस्टल गन की बैरल को पकड़ा और मैजिक क्रिस्टल पाउडर को बैरल में डाला। फिर उसने लकड़ी के बक्से से एक लकड़ी की छड़ी निकाली, उसे बैरल में डाला, डाले गए मैजिक क्रिस्टल पाउडर को कसकर दबाया, फिर एक तांबे की गोली डाली और लकड़ी की छड़ी से उसे फिर से दबाया। तैयारियां पूरी करने के बाद वह एक लकड़ी के खंभे के पास गया जो एक आदमी जितना ऊंचा था और उससे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़ा था। उसने अपने दाहिने हाथ से बंदूक को सीधा रखते हुए खंभे पर निशाना साधा। खानसी, मुझे लगता है कि आपको दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। हालांकि मैजिक क्रिस्टल गन में शॉक एब्जॉर्प्शन मैजिक एरे है, फिर भी आपके लिए रिकॉयल थोड़ा मजबूत है। तभी पास खड़ी राइन ग्रीन ने उसे याद दिलाया, सलाह सुनो, पेट भर खाओ। मरे ग्रीन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सलाह सुनते थे, इसलिए उन्होंने दोनों हाथों से बंदूक के हैंडल को पकड़ा, लकड़ी के डंडे पर निशाना साधा, एक गहरी सांस ली और धीरे से ट्रिगर खींचा, जिससे मैजिक क्रिस्टल पाउडर प्रज्वलित हो गया। मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे पैटर्न चमक उठे, बैंग। मुरे ग्रीन से 10 मीटर से ज्यादा दूर लकड़ी का खंभा एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। मुरे ग्रीन ने भी एक बहुत बड़ी ताकत को पीछे की ओर महसूस किया और अवचेतन रूप से उस भयानक झटके को झेलने के लिए 2 कदम पीछे हट गया। अपने आप को संभालते हुए मरे ग्रीन, जिनके हाथ कांप रहे थे, ने एक गहरी सांस ली और लकड़ी के खंभे को देखा। वह ये देखकर चौंक गया कि मानव ऊंचाई बैरल जितनी मोटी लकड़ी का खंभा वास्तव में उसे एक गोली से उड़ गया था और लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। यह कोई फ्लिंटलॉक बंदूक नहीं थी, यहां तक कि बैरेट भी इसकी शक्ति को पार नहीं कर सकता था। इसकी शक्ति पहले से ही एक हथगोले के बराबर थी। ये कितना जादुई जादू का उपकरण है, एक साधारण व्यक्ति को जादूगर की विनाशकारी शक्ति प्रदान करना, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। पास ही खड़े राइन ग्रीन भी मैजिक क्रिस्टल गन की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन अर्ल ग्रीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ एक चतुर जादुई उपकरण है। हालांकि यह आम लोगों को काफी विनाशकारी शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसकी विनाशकारी सीमा तय है। यहां तक कि अगर कोई जादू का देवता भी इसका उपयोग करता है तो यह अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसके अलावा, इसकी विनाशकारी शक्ति के अलावा इसका कोई अन्य लाभ नहीं है, क्योंकि दुश्मन लकड़ी नहीं है, वे वहां खड़े होकर आपके गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे। केवल स्वयं मजबूत बनकर ही सच्ची ताकत हासिल की जा सकती है। तभी अर्ल ग्रीन ने एक हाथ से अपनी दो हाथ वाली तलवार उठाई, उसे क्षैतिज रूप से घुमाया और एक लाल तलवार की रोशनी उड़ गई। लाल तलवार की रोशनी के सामने की सभी लकड़ी की खूंटियां कट गईं और एक जोरदार धमाके के साथ लाल तलवार की रोशनी ने प्रशिक्षण मैदान की पत्थर की दीवार पर एक गहरी दरार बना दी। अर्ल ग्रीन की तलवार के एक वार की शक्ति इतनी भयानक थी कि मरे ग्रीन विस्मय से हौंफने लगे। क्या अब मेरे लिए योद्धा बनने में बहुत देर हो चुकी है? अपना उपहार रख दो और चलो आज का प्रशिक्षण शुरू करें।
जैसे ही प्रशिक्षण शुरू हुआ, मरे ग्रीन ने योद्धा की वर्दी पहन ली, अपने शरीर को खींचा और यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, उसने एक बिना धार वाली एक हाथ वाली तलवार चुनी और अपनी यादों के आधार पर तलवार चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
पहले तो उसकी चाल कुछ कठोर थी, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यस्त होता गया और अधिक परिचित होता गया, उसकी तलवार चलाने की मुद्राएं अधिक सहज होती गईं। रायन ग्रीन एक मध्यम स्तर के योद्धा होने के कारण अब तलवार प्रशिक्षण को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने युद्ध कौशल और व्यवहारिक लड़ाई को तेज करना शुरू कर दिया, इसलिए उसने एक बिना धार वाली दो हाथ वाली तलवार उठाई और काउंट ग्रीन के साथ युद्ध किया।
हम्फ, रायन ग्रीन ने अपनी तलवार घुमाई, जिसे काउंट ग्रीन ने एक हाथ से आसानी से रोक दिया। फिर काउंट ग्रीन ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए रायन ग्रीन की तलवार को विक्षेपित करने के लिए उसे घुमाया, इसके बाद सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर वार किया।
जवाब में रायन ग्रीन ने अपनी तलवार नीचे की ओर पटक दी, जिससे काउंट ग्रीन का वार विफल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस संभाल पाता, एक मजबूत व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा, उसकी तलवार की मूठ पकड़ी, एक हाथ से तलवार को थामा और पीछे से वार करते हुए तलवार की मूठ को रायन ग्रीन के पेट में घुसा दिया, जिससे रायन ग्रीन दूर हो गया। तुम्हें याद है कि तलवार बहुत अच्छी तरह से चलती है, लेकिन तुम उसमें बदलाव नहीं करते। तुम्हें तलवार को सहज रूप से घुमाना होगा। युद्ध के मैदान में इतना समय नहीं होता कि तुम सोच सको कि क्या चाल चलनी है। फिर से तलवार की मूठ से दूर धकेले जाने पर रायन ग्रीन को पेट में तीव्र दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली, दर्द को सहन किया, अपनी दो हाथ वाली तलवार उठाई और काउंट ग्रीन की ओर वार किया। लेकिन तीन या पांच चालों के बाद काउंट ग्रीन ने उसे दूर धकेल दिया। अपने बड़े भाई की दयनीय स्थिति को देखकर मरे ग्रीन ने चुपचाप योद्धा बनने का विचार त्याग दिया। भविष्य में वह फिर भी एक महान और सुरुचिपूर्ण जादूगर बन जाएगा। तुम भी आओ। इससे पहले कि मरे ग्रीन राहत महसूस कर पाते, काउंट ग्रीन, जिन्होंने रायन ग्रीन को फिर से उड़ा दिया था, सीधे उनकी ओर देखा और अपने जल्द ही वयस्क होने वाले सबसे छोटे बेटे को कुछ देखभाल देने का फैसला किया। मुझे इससे थोड़ा दर्द हो सकता है, काउंट ग्रीन के आदेश का सामना करते हुए मरे ग्रीन उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ महसूस करते हुए अभी भी अपनी एक हाथ वाली तलवार को पकड़े हुए था और सहज रूप से अपनी सामान्य तलवार प्रशिक्षण चालों का उपयोग करते हुए अपनी तलवार को सीधा बाहर निकालते हुए काउंट ग्रीन पर हमला कर दिया। आपका फुटवर्क अस्थिर है और आपकी तलवार के वार पर्याप्त निर्णायक नहीं है।
काउंट ग्रीन ने निर्देश देते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया और मरे ग्रीन की तलवार से बचने के लिए अपने शरीर को थोड़ा घुमाया, रायन ग्रीन के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई और फिर मरे ग्रीन की तलवार पर अपना कंधा पटक कर उसे दूर धकेल दिया। बल बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मरे ग्रीन अचानक चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कलाई मुड़ गई है, उनका शरीर तलवार से दूर खींच लिया गया है और वे दो कदम बगल में लड़खड़ा गए। काउंट ग्रीन ने अपने हाथ से एक वार किया और मरे ग्रीन समय रहते बचने में असमर्थ पीठ में वार किया, आगे की ओर उड़े और विशेष रूप से तैयार की गई महीन रेत में चेहरा पहले गिरा।
प्यूई प्यूई प्यूई। हालांकि वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह हारने की उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार को भी नहीं छू पाया। यह असहनीय था, इसलिए मरे ग्रीन ने अपने मुंह में मौजूद सारी रेत को थूके बिना स्लाइडिंग टेकल किया, काउंट ग्रीन के पैरों पर हमला किया। इसके बाद उसे प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकाल दिया गया। यह क्या बकवास है, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो? खांसी, आह, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पुरानी चोट फिर से उभर आई है, मुझे ठीक होने के लिए अपने कमरे में वापस जाना होगा। ये किस तरह की ट्रेनिंग थी? ये तो असल में बदमाशी थी। इसलिए मरे ग्रीन ने अपनी पहले से घायल छाती को पकड़ते हुए बीमारी का बहाना बनाकर ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गए।
अपने कमरे में फिर से नहा धोकर और मुंह से रेत थूकने के बाद मरे ग्रीन ने पहनने के लिए एक साधारण पोशाक चुनी। मैजिक क्रिस्टल गन के साथ कुछ देर ध्यान से खेलने के बाद उसने उसे अपने डिस्प्ले कैबिनेट में रख दिया। एक विचार के साथ वह ग्रीन कैसल की लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा।
सुप्रभात शिक्षक रॉय। लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही मरे ग्रीन ने टीचर रॉय को पढ़ते हुए देखा। टीचर रॉय 50 साल के एक दयालु चेहरे वाले व्यक्ति थे और उनके आधे करीने से स्टाइल किए हुए बाल सफेद हो गए थे। वो कुलीन परिवार के वंशज थे, ज्ञानी थे, लाइब्रेरियन थे और अंशकालिक शिक्षक भी थे, जिन्होंने मरे ग्रीन को कुलीन शिष्टाचार, पढ़ना लिखना और बुनियादी ज्ञान सिखाया था। ये छोटा मरे है, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं?
मरे ग्रीन का अभिवादन सुनकर शिक्षक रॉय ने ऊपर देखा, उनके वृद्ध चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। मरे ग्रीन ने खुद को थपथपाया और जवाब दिया।
मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। टीचर रॉय, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हाल ही में प्रकाशित एक यात्रा पत्रिका, क्या आप आज इसे पढ़ने के लिए यहाँ हैं?
अध्यापक रॉय ने चिढ़ाते हुए पूछा। मरे ग्रीन को बचपन से ही पढ़ने का शौक नहीं था, यहाँ तक कि नेक शिष्टाचार और बुनियादी ज्ञान भी काउंटेस की सख्त निगरानी में सीखा गया था। आज लाइब्रेरी में उनकी पहल एक दुर्लभ घटना थी। ओह, ये सही है, कल मैं 16 साल का हो जाऊंगा और वयस्क हो जाऊंगा। पिताजी ने मुझे एक जादुई क्रिस्टल गन दी है। ये जादुई क्रिस्टल गन अद्भुत है, इसलिए मैं इसे विस्तार से समझने के लिए इससे संबंधित कुछ किताबें ढूंढना चाहता हूँ।
देखा, यह एक जादुई क्रिस्टल गन है। मुझे याद है कि कुछ किताबों में इसका जिक्र है। एक मिनट रुको, मैं जाकर उन्हें ढूंढता हूँ।
रॉय को अचानक समझ आ गया। वह खड़ा हुआ, अपनी छड़ी उठाए और अपनी छड़ी पर झुकते हुए धीरे धीरे किताबों की अलमारियों की ओर चला गया।
संपूर्ण पुस्तकालय लगभग 200 वर्ग मीटर में फैला था, जिसमें 20 से अधिक पुस्तक अलमारियां थीं, लेकिन केवल एक अलमारी में जानवरों की खाल से बनी पुस्तकें रखी थीं, बाकी सभी साधारण कागज की पुस्तकें थीं।
कुछ ही देर बाद शिक्षक रॉय 4 किताबें लेकर लौटे, एक जानवर की खाल वाली किताब और 3 कागज वाली किताबें। किताबें प्राप्त करने के बाद मरे ग्रीन ने शिक्षक रॉय के साथ कुछ सुखद बातचीत की, फिर लाइब्रेरी से बाहर निकलकर अपने कमरे में लौट आए।
मॉस किंगडम के पतन का इतिहास, विस्फोटकों पर शोध, रेंजर एंथनी, और अंत में जानवरों की खाल से बनी किताब, मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे एनग्रेविंग के लिए मुख्य बिंदु। मरे ग्रीन ने जल्दी से उन्हें पलट दिया। यह वर्तमान में ईश्वर रहस्योद्घाटन कैलेंडर का 4225वां वर्ष था। मॉस किंगडम एक ऐसा देश था जो 1000 साल पहले ईश्वर रहस्योद्घाटन कैलेंडर के 3123वें वर्ष में गिर गया था। इस देश के राजा को अजीब और असामान्य चीजें पसंद थीं, इसलिए उसने अपने लिए दिलचस्प चीजें बनाने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को नियुक्त किया।
उनमें से एक आतिशबाजी कारीगर ने एक मैचलॉक गन बनाई। जब मॉस के राजा को ये बहुत परेशानी भरा लगा तो उसने आगे नवाचार किया और एक फ्लिंटलॉक गन बनाई। राजा बस ट्रिगर खींचता था और शिकार गिर जाता था, जिससे मॉस का राजा बहुत खुश होता था।
मॉस के राजा की मृत्यु के बाद नया राजा सिंहासन पर बैठा और उसने बाहरी युद्ध शुरू किए, जिससे पता चला कि फ्लिंटलॉक बंदूक न केवल शिकार के लिए बल्कि लोगों से लड़ने के लिए भी बेहतरीन थी। फ्लिंटलॉक बंदूक की मदद से मॉस साम्राज्य ने बार बार लड़ाई जीती, जिससे कई पड़ोसी देशों को इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। गर्म हथियारों के खिलाफ ठंडे हथियार, संख्याएं क्या मायने रखती हैं, लेकिन इस दुनिया में युद्ध आभा और जादू था। बाद में कई देशों ने एकजुट होकर एक योद्धा सेना बनाई जो पूरी तरह से बख्तरबंद और हवा की तरह चलती थी, जिसने सीधे मॉस किंगडम को हराया। फिर मॉस किंगडम के महल को एक संयुक्त जादुई सेना ने समतल कर दिया। नया राजा मर गया और मॉस किंगडम विभाजित और नष्ट हो गया। मॉस किंगडम के भाग्य को देखते हुए मरे ग्रीन ने व्यक्तिगत रूप से दुनिया को जीतने के साहसिक विचार को खारिज कर दिया जो अचानक उसके दिमाग में आया था। हालांकि तकनीकी विकास की ऊपरी सीमा बहुत ऊंची थी, लेकिन जब तक वह कम समय में एक बड़ा मशरूम नहीं उगा पाता, तब तक उसके सिर पर एक जादू का निषिद्ध मंत्र पड़ जाता। और वह सिर्फ एक साधारण 996 कर्मचारी हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा कुछ सैन्य कार्यक्रम देखता था और कुछ आग्नेयास्त्र वीडियो ब्राउज करता था। आखिरकार लड़कों को हमेशा हथियारों का शौक होता है, लेकिन मशरूम उगाना उसकी क्षमता से परे था। विस्फोटकों पर शोध में विभिन्न विस्फोटकों के लिए सामग्री अनुपात अनुसंधान का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें मैजिक क्रिस्टल गन में इस्तेमाल किया जाने वाला मैजिक क्रिस्टल पाउडर भी शामिल है। मैजिक क्रिस्टल गन फ्लिंटलॉक गन का एक जादुई संशोधन था। रेंजर एंथनी नामक एक रेंजर के बारे में एक उपन्यास था, जो एक हाथ में लंबी तलवार और दूसरे हाथ में मैजिक क्रिस्टल गन लेकर बुराई को दंडित करता था और अच्छाई को बढ़ावा देता था। ये बहुत दिलचस्प नहीं था?
जानवर की खाल वाली किताब, मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे उत्कीर्णन के लिए मुख्य बिंदु, एक ऑपरेशन मैनुअल थी कि कैसे जादूगर मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे उत्कीर्ण करते हैं। मरे ग्रीन इसे समझ नहीं पाए। वह केवल इतना जानते थे कि उनके हाथ में मैजिक क्रिस्टल गन पर एक सॉलिड मैजिक एरे और एक शॉक एब्जॉर्प्शन मैजिक एरे उत्कीर्ण था।
अगले दिन समय शांतिपूर्वक बीत गया और रात हो गई। मूलतः मंद और एकांत ग्रीन फैमिली कैसल को चमकीले प्रकाश से सजाया गया था और शानदार पोशाक पहने हुए कुलीन व्यक्तियों को लेकर शानदार गाड़ियां बिना रुके ग्रीन फैमिली कैसल की ओर दौड़ रही थीं, ताकि वे मरे के लिए विशेष रूप से आयोजित युवावस्था भोज में भाग ले सकें। शांतिपूर्ण ग्रीन फैमिली कैसल धीरे धीरे जीवंत और लोगों से भरा हुआ हो गया।
और आज रात का नायक मरे ग्रीन काउंटेस द्वारा तैयार किया गया था। एक शानदार कुलीन पोशाक पहनाई गई थी, उसके चेहरे पर महंगे सौंदर्य प्रसाधन लगाए गए थे, जिससे मरे का पहले से ही गोरा रंग बर्फ सफेद हो गया था और उसके होंठ खून की तरह चमकदार हो गए थे।
कांस्य दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, जो ऐसा लग रहा था जैसे सौंदर्य फिल्टर पूरी तरह से चालू हो गया हो, एक बहुत ही अपरिचित स्वयं मरे ग्रीन को ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद को गोली मारना चाहता था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक व्यक्ति जो दो जीवन कालों में दशकों पुराना था आज ऐसी स्थिति का सामना करेगा। हम बहुत अच्छा, जैसी कि मेरे लिटिल मरे से उम्मीद थी, वह मेरे जैसा दिखता है, बहुत सुंदर। घर पर जो मरे को सबसे अधिक प्यार करती थी वह थी उसकी माँ पेनी कैंपबेल। राइन की तुलना में मरे दिखने में काउंटेस से अधिक मिलते जुलते थे, सुंदर और आकर्षक, जिसमें नाजुकता का भी एक संकेत था।
रक्त वंशानुक्रम के संदर्भ में काउंटेस की पारिवारिक रक्त वंशावली भी मरे में अधिक स्पष्ट थी, क्योंकि मरे की आंखें काउंटेस के समान हल्के नीले रंग की थीं, जबकि कैंपबेल मार्क्विस और राइन दोनों की आंखें काली थीं। माँ, क्या ये रूप बहुत बहुत अमानवीय नहीं लगता? क्या आप मेरा मेकअप हटा देंगी? ये सुनकर काउंटेस ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए मरे के सिर पर धीरे से थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे पिता ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है, तुम सिर्फ लड़ाई झगड़ा और हत्या करना जानते हो, भद्दा, बिना किसी शिष्टाचार के। रुको, जब तक तुम स्कूल नहीं जाते और अपने जादूगर सहपाठियों से बातचीत नहीं करते, तब तक तुम जान जाओगे कि खुद को कैसे नियंत्रित रखना है। तुम भविष्य में एक महान जादूगर बनोगे, एक लापरवाह योद्धा नहीं। काउंटेस का नाम पेनी कैंपबेल है, जो वर्तमान कैंपबेल मार्क्विस की तीसरी बेटी है। ग्रीन परिवार के विपरीत, जिसका केवल 200 साल का कुलीन इतिहास है, कैंपबेल परिवार एक शक्तिशाली परिवार है जो इस देश की स्थापना से पहले अस्तित्व में था, एक प्रसिद्ध मैजिक परिवार। राष्ट्र की स्थापना के बाद उन्होंने 600 से अधिक वर्षों तक मार्क्विस का पद संभाला है, जो राज्य के उत्तरी भाग में चार महान मार्क्विस में से एक है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। उनकी तुलना में ग्रीन परिवार केवल एक नवाधनाढ्य है।
कैंपबेल परिवार के इतिहास में जल तत्व का एक महान जादूगर रहा है। ऐसा अस्तित्व उनकी महान शक्ति को उनके वंश में एकीकृत कर सकता है और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचा सकता है। इसलिए जो लोग कैंपबेल परिवार के वंश के हैं और इसे प्रकट कर सकते हैं, उनमें मूल रूप से जल तत्व के जादूगर बनने की क्षमता होती है। मरे की हल्की नीली आंखें कैंपबेल वंश की अभिव्यक्ति का सबूत हैं। दुर्भाग्य से उसके बालों का रंग काउंटेस की तरह हल्का नीला नहीं है, बल्कि कैंपबेल मार्क्विस की तरह काला है, जो दर्शाता है कि मरे की जल तत्व जादू क्षमता काउंटेस जितनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी वह जादूगर बनने की क्षमता रखता है। पेनी कैंपबेल एक मध्यवर्ती जल तत्व जादूगर है, जो जल तत्व उपचार जादू में कुशल है, और वह एक पोषण मास्टर भी बन गई है, जो स्वतंत्र रूप से पोषण को परिष्कृत करने में सक्षम है। मरे के भविष्य के लिए काउंटेस की योजना अपने पुराने रास्ते पर चलना है, जल तत्व उपचार जादूगर बनना है। जब उसका बड़ा भाई राइन भविष्य में युद्ध के मैदान में जाता है, तो भाई के रूप में उपचार जादूगर होने से उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यदि मरे पोषण मास्टर भी बन सके तो यह और भी बेहतर होगा। अच्छा, सुंदर, आज का लिटिल मुरे वाकई सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि आज रात वह कितनी कुलीन युवतियों को आकर्षित करेगा।
काउंटेस द्वारा 2 घंटे से ज्यादा मेकअप और ड्रेसिंग के बाद मूल रूप से सुंदर मुरे और भी ज्यादा आकर्षक हो गए। शायद काउंटेस ने उनके पहले के सुझाव पर विचार किया होगा, क्योंकि उन्होंने उनके लंबे बालों को सुनहरे बालों की टाई के साथ एक भेड़िया पूंछ में बांध दिया, जिससे उनमें एक परिपक्व और जंगली आभा आ गई।
मुरे ग्रीन के वयस्क होने के समारोह में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज रात सभी का समय अच्छा बीतेगा और वे एक सुखद शाम का आनंद लेंगे। अब भोज शुरू हो जाए।
कैंपबेल मार्क्विस, एक सैन्य व्यक्ति, ने कुछ शब्द बोले, संक्षिप्त तरीके से मेहमानों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। शुरुआती ड्रिंक पीने के बाद वह नीचे उतर गया और पूरे मार्क्विसेट के रईसों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ हॉल के केंद्र में बैठकर शराब पी और बातें की।
दूसरी ओर काउंटेस अन्य कुलीन महिलाओं को मनोरंजन के लिए पीछे वाले हॉल में ले गई, जबकि शेष बच्चे हॉल में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहे।
उस दिन के नायक के रूप में मरे कई लोगों से घिरे हुए थे।
अरे मरे, युवावस्था की शुभकामनाएं। क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ ऐसा इंतजाम करूं जिससे तुम एक असली मर्द बन सको? एक मोटा ताजा व्यक्ति मरे के पास आकर उसके कान में फुसफुसाया और उसे आंख मारी। हालांकि ये शब्द फुसफुसाए गए थे, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें सुना और फिर ये लोग भी धीमी आवाज में मरे को चिढ़ाने लगे। यह सही है मरे, जब हम तुम्हें मौज मस्ती के लिए बाहर ले गए थे तो तुमने कहा था कि कैंपबेल मार्क्विस सख्त हैं और तुम अभी वयस्क नहीं हुए हो। अब जब तुम आज वयस्क हो गए हो तो हम भाई तुम्हारे लिए एक वास्तविक वयस्कता समारोह आयोजित करेंगे।
हाहा, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आसपास मौजूद समान विचारधारा वाले दोस्तों का समूह धीरे से हंसने लगा। मरे ग्रीन का चेहरा पहले तो लाल हो गया, फिर उसने सख्त चेहरा बनाया और गुस्से से फुसफुसाया।
भागो तुम बूढ़े विकृत लोग, तुरंत चले जाओ। इन बूढ़े बदमाशों की बातें सुनकर, जिनमें से एक उसे छोटा लड़का कह रहा था और दूसरा कह रहा था कि वह असली वयस्क नहीं है, मरे का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। उसने गुस्से में उनमें से हर एक को मुक्का मारा, लेकिन उसके बदमाश दोस्त न केवल नाराज हुए बल्कि जोर से हंस पड़े। ओह मरे, हमारा भाई बड़ा हो गया है और उसका स्वाद ज्यादा चुस्त हो गया है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ मौजूद कुलीन युवतियों पर डोरे डालना चाहते हो? तुम्हें कुछ भी करने से पहले दो बार सोचना चाहिए। वे कांटेदार गुलाब हैं, और अगर तुम उनके साथ खेलोगी तो तुम्हें शादी के लिए तैयार रहना होगा। अगर तुम्हारा ऐसा कोई विचार है तो मैं अनिच्छा से अपनी बड़ी और छोटी बहनों को तुमसे मिलवा सकता हूँ। तुम जो भी चाहोगी मैं उसे बता दूंगा। उसकी बहनें भी उसके जितनी ही मोटी हैं, लेकिन तुमने मेरी छोटी बहन को देखा है, वह सुंदर है ना? जब तक तुम आवाज़ निकालोगी मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। किसने कहा कि मेरी बहनें मोटी हैं? वे सुडौल हैं, थोड़ा मोटा होना सबसे अच्छा है। आपकी छोटी बहन भी बीन स्प्राउट से अलग नहीं है। हालांकि मरे कैंपबेल मार्क्विस के दूसरे बेटे थे, लेकिन जब तक राइन ग्रीन जीवित थे तब तक उनके पास मार्क्विसेट का उत्तराधिकार पाने का कोई मौका नहीं था। हालांकि मार्क्विस के बेटे के रूप में पूरे मार्क्विसेट के दूसरे युवा स्वामी के रूप में अविवाहित महिलाओं के लिए उनकी वांछनीयता कुलीन उत्तराधिकार अधिकारों वाले पुरुषों के बाद दूसरे स्थान पर थी। पूरे मार्क्विसेट में कुलीनों की संख्या सीमित थी, और हालांकि कुलीन युवतियां बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से कुलीनों से ज्यादा थी। उन सभी के लिए पर्याप्त कुलीन पत्नियां नहीं थीं।
और कैंपबेल मार्क्विस की देखरेख में अपनी कुलीन स्थिति के अलावा मरे का भविष्य का जीवन निश्चित रूप से कई रईसों की तुलना में अधिक आरामदायक होगा। अगर वह कैंपबेल मार्क्विस के साथ युद्ध के मैदान में कुछ राउंड के लिए जाता और कुछ सैन्य योग्यता अर्जित करता तो उसके लिए कुलीन बनना असंभव नहीं था।
दुष्ट मित्रों के इस समूह को, जो आमतौर पर मरे के साथ अच्छे से रहते थे, आज एक कार्य भी मिला, मरे को घर पर अपनी बहनों के साथ स्थापित करना। मरे को आखिरकार समझ में आ गया कि ये बूढ़े बदमाश उन कुलीन युवतियों के साथ क्यों नहीं इश्कबाजी करते थे, बल्कि उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते थे, जो एक बड़ा आदमी था। मार्क्विस के बेटे के रूप में मरे को कई महान रहस्य पता थे, और उसने ये भी सोचा कि वे आज अपना स्वाद बदलने की योजना बना रहे थे, ये जानते हुए कि मरे को आज काउंटेस ने इतनी खूबसूरती से तैयार किया था। नहीं, मुझे उनसे दूर रहना होगा, वरना पता नहीं अगले दिन क्या अफवाह उड़ेगी और मेरी दो जन्मों की मासूमियत बर्बाद हो जाएगी। अतीत में बदसूरत होने के कारण किसी की गर्लफ्रेंड न होना सामान्य बात थी। अब जब वह इतना सुंदर है, अगर इस कारण से अभी भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या ये पूरी तरह से आपदा नहीं होगी? अरे, आप लोगों को मेरा परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। शराब का गिलास थामे मरे ग्रीन ने छोटे घेरे से बाहर निकलकर कुलीन युवतियों द्वारा बनाए गए सैलून घेरे की ओर कदम बढ़ाया।
उसके कुछ साथियों ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया, फिर खुशी खुशी उसके पीछे चले, जिससे मरे ग्रीन गर्व से लबरेज होकर युद्ध के लिए जाने वाले एक जनरल की तरह लग रहे थे।
मैं 5 चांदी के सिक्कों पर शर्त लगाता हूँ कि मरे 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे और शर्माकर भाग जाएंगे। 1, 3 मिनट और जोड़ो। 1, 5 चांदी के सिक्के घटाएं। मैं शर्त लगाता हूँ कि 1 मिनट। मरे के बारे में मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार यह अंतर्मुखी और शर्मीला बच्चा निश्चित रूप से 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा।
जनरल युद्ध के मैदान में उतरने ही वाला था, लेकिन उसके पीछे खड़े सैनिकों ने गुप्त रूप से सट्टेबाजी का खेल शुरू कर दिया, जिसमें उसकी हार पर भारी दांव लगाया गया। यद्यपि साथियों का ये समूह केवल फुसफुसा रहा था, मरे ग्रीन जो आगे चल रहा था उन्हें स्पष्ट रूप से सुन रहा था। उसका मुंह फड़क रहा था, एक पल के लिए वह अवाक रह गया।
क्या वे ऐसा जानबूझकर कर रहे थे, या दुर्घटनावश, या फिर जानबूझकर अनजाने में उसे यह बात सुना रहे थे? इसके अलावा क्या अंतर्मुखी और शर्मीला शब्द का तात्पर्य उन्हीं से था? मरे ग्रीन ने एक पल सोचा, फिर उसने फैसला किया कि उसके पास सोचने का समय नहीं है। वह अंदर जा रहा था। हॉल के किनारे पर कई कुलीन युवतियां एक साथ बैठी थीं, विशेष रूप से बनाई गई पेस्ट्री और काली चाय का आनंद ले रही थीं, कानाफूसी कर रही थीं और भोजन, फैशन और गपशप पर चर्चा कर रही थीं। कभी कभी हल्की हंसी भी निकाल रही थीं, जिससे युवा ऊर्जा झलक रही थी। देखो, मरे ग्रीन आ रहा है। वाह, मरे ग्रीन आज रात बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि वह इतना सुंदर था। हालांकि उसके बाल भेड़िए की पूंछ की तरह कटे हुए हैं, लेकिन उसमें कोमलता का एक स्पर्श है, इतना अनोखा कि मैं वास्तव में उसे चिढ़ाना चाहता हूँ। अपने साथी की बातें सुनकर गपशप कर रही कुलीन युवतियां तुरंत सोफे पर सीधी बैठ गईं। उनकी आंखें शांति से मरे ग्रीन को देख रही थीं। नमस्ते सुंदर महिलाओं, शुभ संध्या। आज रात मेरे युवावस्था भोज में आने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी की शाम सुखद रहेगी। कई कुलीन युवतियों ने सिर हिलाया, लेकिन तभी एक सुस्त आवाज सुनाई दी। बिलियन फूलों के पराग की खुशबू, उत्तम और सुरुचिपूर्ण पेस्ट्री और काली चाय एक नई रेसिपी है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं चखा है, और वे अनोखे ढंग से जोड़े गए हैं। एक बार चखने से ही पता चल जाता है कि उन्हें बेहतर बनाने में बहुत मेहनत की गई है। ये भोज बहुत अच्छा है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। ये सुनकर मरे ग्रीन उस कुलीन युवती की ओर देखने लगे जो बोल रही थी। उन पर चमकदार जादुई क्रिस्टल प्रकाश चमक रहा था। उसका गोरा रंग गहरे काले रंग के गाउन के साथ मिलकर उसे बर्फ से भी ज्यादा सफेद बना रहा था। उसके गले में एक हीरे का हार था, जो जादुई चिराग के नीचे मनमोहक रंगों से चमक रहा था। उसकी सुंदर धनुषाकार भौहों के नीचे उसकी आंखें सुस्ती से उसे देख रही थीं और एक चंचल मुस्कान उसके नाजुक चेहरे पर छा रही थी।
ओह, वह कितनी परिपक्व है। यद्यपि उस दुनिया में जब फोन खुला हो और छोटे छोटे वीडियो चल रहे हों, तो सुंदरियां बहुतायत में थीं, जिससे उनका हृदय जल के समान शांत हो गया था तथा सांसारिक इच्छाओं के पार देख रहा था। फिर भी वास्तव में कितने साधारण लोग सुंदरी को देखकर शांत रह सकते थे।
मरे ग्रीन का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि सचमुच अंतर्मुखी और शर्मीला शब्द उन्हीं के लिए था। बुबूबू, वह तुरंत पराजित हो गया। वह वास्तव में भागना चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए मरे ग्रीन, जिन्होंने जल्दी से अपनी याददाश्त को खंगाला था, ने उत्तर दिया, एंजी, बहुत दिनों से मिले नहीं, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। हालांकि इस दुनिया में पूर्णता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन पूर्णता की खोज करना हर किसी का लक्ष्य है। क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि इस भोज को पूर्णता के और करीब कैसे बनाया जाए? बधाई के लिए धन्यवाद, मरे, वास्तव में बहुत समय हो गया है।
एंजी ने मुरे ग्रीन को ध्यान से देखा। उसका चेहरा सुंदर था, शरीर सुडौल था और उसका शरीर थोड़ा तना हुआ था।
हालांकि वे आमतौर पर ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, केवल प्रमुख दावतों में ही एक दूसरे को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते थे, फिर भी वह बता सकती थी कि वह कुछ हद तक घबराया हुआ था। ये सोचकर कि आज उसकी युवावस्था का भोज है, कुछ ऊब चुकी एंजी को अचानक दिलचस्पी हो गई। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी, एक चिढ़ाने वाला विचार आया और उसने अपने बगल में सोफे को हल्के से थपथपाया। बेशक मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आओ बैठो और मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। माँ, एक खूबसूरत महिला गुंडा मुझसे छेड़छाड़ करना चाहती है। सुंदर, ये सोचकर कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, मरे ग्रीन कैसे पीछे हट सकता था। उसने अपने साथियों की ओर देखा और देखा कि वे सिर हिला रहे थे, ये संकेत देते हुए कि वे उसके साथ थे। इसलिए मरे ग्रीन ने साहसपूर्वक दो कदम आगे बढ़ाए और एंजी के बगल में बैठ गए। एंजी से आ रही एक हल्की नाजुक खुशबू हर सांस के साथ उसकी नाक में समा रही थी। उसने इसे पहले कभी नहीं सूंघा था, ये काफी सुखद थी।
ऊपर देखने पर मरे ग्रीन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो साथी उसके साथ होने का संकेत दे रहे थे, वे बहुत दूर भाग गए थे।
उन्होंने मरे ग्रीन की ओर देखा, अपनी छाती पर मुट्ठी थपथपाई, फिर मरे ग्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा दिल आपके साथ है। आप लोग अविश्वसनीय मित्रों का एक समूह, अविश्वसनीय साथियों के साथ और अकेले लड़ते हुए। मरे ग्रीन ने खुद को संभाला, अपना वाइन ग्लास मेज पर रखा और चारों ओर नजर घुमाई तो पाया कि कई कुलीन युवतियां उनकी ओर मुस्कुरा रही थीं, हालांकि उनकी मुस्कुराहट कुछ अजीब थी। अरे नहीं, भेड़ियों के बीच एक भेड़, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए जाऊंगा। अगर इस बार आतिथ्य में कुछ कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सभी सुंदर महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि आप अधिक समझदार बने और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करें। हे, यंग मास्टर मरे मजाक कर रहे हैं। काउंटेस द्वारा सावधानीपूर्वक आयोजित भोज कैसे परिपूर्णता से कम हो सकता है? हम बस एक छोटा सा सुझाव देना चाहते थे, अगर हम ऐसा कर सकते हैं। कृपया ऐसा करें, मिस एंजी। मरे ग्रीन को धीरे धीरे चीजों के लय में आते और ज्यादा स्वाभाविक व्यवहार करते हुए देखकर एंजी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपनी काली चाय उठाई और कहा, बहनों, आज यंग मास्टर मरे का वयस्क होने का भोज है। आइए हम सब मिलकर उनके लिए टोस्ट उठाएं और यंग मास्टर मरे को उनके वयस्क होने पर बधाई दें। ठीक है मरे, वयस्क होने पर खुशी मनाओ। मुरे, युवावस्था की शुभकामनाएं। कई कुलीन युवतियों ने अपने चाय के प्याले उठाए और मुरे ग्रीन की ओर देखते हुए आशीर्वाद के शब्द बोले। समूह द्वारा घूरे जाने पर मुरे ग्रीन मुस्कुराए, लेकिन उनका दिल दहल गया। काली चाय के साथ टोस्ट करना, ये कैसी चाल है? आप सभी को धन्यवाद। हालांकि वह ये समझ नहीं पाया था, लेकिन मरे ग्रीन कई खूबसूरत महिलाओं से आशीर्वाद पाकर बहुत खुश था। उसने फिर से अपना वाइन ग्लास उठाया, हल्के से गिलासों को टकराया और फिर एक ही घूंट में अपने गिलास में भरी वाइन पी गया। इससे पहले कि मरे ग्रीन निगल पाते, एंजी अपना चाय का कप पकड़े, उनके करीब झुकी, काली चाय का एक छोटा सा घूंट लिया और उसके गुलाबी होंठों ने धीरे से कहा,
आह, भोज में शराब का सेवन किया जाना चाहिए, फिर भी हम बहनें केवल काली चाय पी रही हैं। क्या कोई सुंदर, युवा, आकर्षक सज्जन हमारे साथ आकर पीने के लिए नहीं आ रहा है? युवा मास्टर मरे, क्या आपको लगता है कि शराब के बिना भोज भी एक संपूर्ण भोज हो सकता है?
उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके बगल में खड़ी कई कुलीन युवतियों ने उंगलियां चटकाई और शराब की बोतलें पकड़े कई पुरुष सेवकों को इशारा करके पास आने को कहा। धप धप धप, शराब की कई बोतलें खोलकर मेज पर रख दी गईं। पुरुष नौकरों ने सोच समझकर उनके लिए काली चाय निकाली, मरे ग्रीन का खाली वाइन ग्लास हटा दिया और उसकी जगह एक समान शैली का हाई सटेम शॉट ग्लास रख दिया। जब सब कुछ भर गया तो एंजी ने पुरुष नौकरों को जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर मुरे ग्रीन की ओर तीन भागों वाली पूछताछ, तीन भागों वाली अपेक्षा और चार भागों वाली चुनौती से देखते हुए मुस्कुराई। हे, महाराज, आपके बेटे को आपका आकर्षण विरासत में मिला है, लेकिन आपका मजबूत शरीर नहीं, इस स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि क्या वह इसे संभाल पाएगा। अर्ल ने एक मग शराब पी, पीछे के हॉल की ओर देखा, फिर शराब से अपना मुंह धोया, मरे की दिशा में देखा। हालांकि वह मरे के बारे में आशावादी नहीं था, फिर भी उसने कहा, चिंता मत करो मेरा बेटा, हालांकि थोड़ा दुबला है लेकिन कुछ लड़कियों को संभालने में सक्षम है। महाराज, युवा स्वामी अब वयस्क हो गए हैं, क्या आपके पास उनकी शादी के लिए कोई योजना है? मरे ग्रीन की तुलना में वास्तव में सभी लोग अपनी बेटियों की शादी राइन ग्रीन से करना पसंद करते थे। हालांकि अर्ल के उत्तराधिकारी के रूप में राइन ग्रीन की स्थिति न केवल अर्लडम में बल्कि पूरे उत्तरी भूमि में भी कम नहीं थी। यहां तक कि मार्क्विस की बेटी भी भावी काउंटेस के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। भावी काउंटेस के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी, इसलिए कुछ लोगों ने अपने लक्ष्य बदल दिए और मुरे ग्रीन को लक्ष्य बनाया। हे, बच्चों के सारे मामले पेनी संभालती है, आओ पीते हैं। इस ड्रिंक के बाद हम खेलने के लिए पीछे के हॉल में जाएंगे, हम ये जगह इन बच्चों के लिए छोड़ देंगे ताकि वे खुद का आनंद ले सकें। वयस्कता का अर्थ है कि आप वे चीजें कर सकते हैं जो बचपन में वर्जित थीं, जैसे शराब पीना, लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि आप कुछ चीजों को मना नहीं कर सकते, जैसे टोस्ट लेने से मना करना या शराब पीने से डरना।
मरे ग्रीन को पता था कि वयस्क होना कठिन है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वयस्कता का उसका पहला दिन इतना कठिन होगा। जब मरे ग्रीन बिस्तर से बाहर निकले तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी और वह तीसरे दिन तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उस रात मरे ग्रीन को अभी भी इस बारे में सोचते हुए ठंड लग रही थी। अर्ल ग्रीन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद केंद्रीय हॉल को प्यादों ने खाली कर दिया और ऑर्केस्ट्रा, जो कोमल संगीत बजा रहा था, ने नृत्य संगीत बजाना शुरू कर दिया। शुरू में शांत भोज तुरंत जीवंत हो गया, जिसमें युवा पुरुष और महिलाएं बेतहाशा नाच रहे थे।
मरे ग्रीन हालांकि शराब पी रहे कुलीन युवतियों के एक समूह से घिरे हुए थे, हालांकि इस निकाय के पास पहले भी गुप्त रूप से शराब पीने का रिकॉर्ड था, लेकिन यह हमेशा सिर्फ एक स्वाद था। नतीजतन उस रात तीव्रता सीधे बढ़ गई, एक के बाद एक कप, और वह बेहोश हो गया। उनके बड़े भाई राइन ग्रीन के अनुसार नशे में धुत मरे ग्रीन एक मूर्ख की तरह थे। सोफे पर आज्ञाकारी ढंग से बैठे रहते थे, सुन्न और केवल सहज ज्ञान पर काम करते थे। जो कोई भी उनके साथ नृत्य करना चाहता था वह उन्हें दूर ले जा सकता था, और नृत्य करने के बाद उन्हें वापस खींच लिया जाता था और वे वहीं खाली बैठे रहते थे, जो बहुत मनोरंजक था। इसीलिए कई कुलीन युवतियां उसके साथ नृत्य करने आती थीं। अगर राइन ग्रीन स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखती और उसे नहीं देखती तो मरे ग्रीन को उस रात कोई युवती घर ले जाती। अपने वयस्क होने के दिन पर वह सचमुच वयस्कता प्राप्त कर रहा है। उस रात मरे ग्रीन को ये याद नहीं था कि उसने कितनी बोतल शराब पी थी, नहीं उसे याद था कि उसने कितनी लड़कियों के साथ डांस किया था। उसे बस इतना याद था कि उसने बहुत शराब पी थी और वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन एंजेला ने उसे डांस करने के लिए खींच लिया। कोमल स्पर्श और मनमोहक खुशबू उसकी आखिरी यादें थीं। कितना शर्मनाक। वयस्कता समारोह के बाद के दिनों में मरे ग्रीन घर पर ही रहे, सुबह अपने पिता और बड़े भाई के साथ प्रशिक्षण लेते थे और दोपहर में शिक्षक रॉय के साथ अध्ययन कक्ष में पढ़ते थे। उनके प्रदर्शन से शिक्षक रॉय बहुत प्रसन्न होते थे और वे उन्हें ऐसी बातें भी बताते थे जो किताबों में नहीं मिलती, जिससे धीरे धीरे मरे ग्रीन की इस दुनिया के बारे में समझ बढ़ती गई। अपने शयन कक्ष में मरे ग्रीन ने अपने सामने रखे कई ब्लूप्रिंटों की सावधानीपूर्वक जांच की। ये सभी बंदूकों के डिजाइन थे जिन्हें उन्होंने पिछले कुछ दिनों में स्वयं तैयार किया था। भूल जाओ, इस जादुई दुनिया में ये चीजें सिर्फ खिलौने हैं। एक हल्की आह भरते हुए मरे ग्रीन ने अपने हाथ में लिए ब्लूप्रिंट को जलाया और उन्हें तब तक अंगीठी में फेंका जब तक कि वे पूरी तरह राख में नहीं बदल गए।
ब्लूप्रिंट से निपटने के बाद मरे ग्रीन ने कैजुअल कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद इस दुनिया में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस न करते हुए उसने फिर भी स्टोरेज कैबिनेट खोला, एक मैजिक क्रिस्टल गन निकाली, उसे एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए होलिस्टर में रखा और होलिस्टर को अपनी कमर से बांध लिया।
जिम, गाड़ी तैयार करो, मुझे थोड़ी देर में शहर जाना है। हाँ युवा मास्टर, पैदल यात्री जिम यात्रा की व्यवस्था करने के लिए तुरंत निकल गया। जब मरे ग्रीन महल के गेट से बाहर निकले तो एक गाड़ी और दो अर्ध कवच पहने हुए गार्ड पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। यह एक घोड़े वाली चार पहियों वाली गाड़ी थी जिसका बाहरी हिस्सा काला और लाल था और एक साइड दरवाजा था। जिम ने दरवाजा खोला जिससे अंदर दो पंक्तियों में आमने सामने सोफा सीटें दिखाई दीं। मरे ग्रीन एक सीट पर बैठे हाल ही में जलाई गई धूप की खुशबू को सूंघते हुए तरोताजा महसूस कर रहे थे। सैम के टैवन तक, हाँ चलाओ, मरे ग्रीन का आदेश पाकर दोनों पहरेदार तुरंत अपने घोड़ों पर सवार हो गए और रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ गए। सज्जन की तरह कपड़े पहने गाड़ी चालक ने हल्के से अपना चाबुक हिलाया और गाड़ी को खींचने वाला घोड़ा दौड़ने लगा। ग्रीन परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल और काला ज्वलंत वॉरहैमर झंडा छत पर लहराया और गाड़ी महल की पहाड़ी की ओर तेजी से नीचे उतरी। ग्रीन कैसल ग्रीन सिटी के उत्तर में एक छोटी पहाड़ी पर बनाया गया था, नहीं सटीक रूप से कहा जाए तो ग्रीन सिटी का निर्माण ग्रीन कैसल के चारों ओर दक्षिण में किया गया था, क्योंकि ग्रीन टेरिटरी राज्य की सीमा पर स्थित थी। उत्तर की ओर सीमा के पार सेवेज ऑक थे जो मनुष्यों से अलग थे। ये सेवेज ऑक कभी कभी दक्षिण में हमला करते थे, भोजन और लोगों को लूटते थे, इसलिए ग्रीन कैसल ग्रीन सिटी की रक्षा की पहली पंक्ति थी। ग्रीन कैसल का इतिहास ग्रीन परिवार से भी ज्यादा पुराना है, जो सैकड़ों साल पुराना है। राज्य की स्थापना के बाद से ये कई रईसों के हाथों में रहा है और कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। अंत में 200 साल से भी ज्यादा पहले ग्रीन एंसेस्टर एक लोहार ने अपने लोहार भाइयों, बच्चों और प्रशिक्षुओं को सेवेज ऑक के आक्रमण का विरोध करने के लिए नेतृत्व किया। कई सालों की लड़ाई के बाद उन्हें ग्रीन उपनाम दिया गया, जो सामंती कुलीनता की पहली पीढ़ी बन गई। बैरन ग्रीन की उपाधि और जागीर ग्रीन टेरिटरी के साथ ग्रीन परिवार के लिए एक शानदार नींव रखी। बैरन ग्रीन की अगली पीढ़ियां भी पीछे रहने को तैयार नहीं थी। उन्होंने न केवल ग्रीन क्षेत्र को संरक्षित किया, बल्कि आक्रमणकारी सेवेज ऑक्स के खिलाफ लड़ने के लिए सक्रिय रूप से सेना भी भेजी और सफलतापूर्वक विस्काउंट ग्रीन के पद पर पदोन्नत हुए। अंततः अंतिम विस्काउंट ग्रीन मरे ग्रीन के दादा अपने पिता अर्ल ग्रीन को लेकर उत्तरी भूमि के घास के मैदान में सेवेज ऑक्स पर जवाबी हमला करने गए और दुर्भाग्यवश युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अर्ल ग्रीन ने एक ही युद्ध में सफलता प्राप्त की। उसने सीमा के आसपास के 100,000 मजबूत ऑक जनजाति को पीछे धकेल दिया, 3-10,000 मजबूत जनजातियों को कुचल दिया, उनकी भूमि ले ली और अर्ल ग्रीन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ग्रीन के वर्तमान अल्डोम में मूल विस्काउंट का क्षेत्र, 3 बैरन के क्षेत्र, साथ ही उत्तरी भूमि घास के मैदान का एक बड़ा विस्तार शामिल है। इसके पास 7 शहर और 3 किले हैं, जो इसे एक शक्तिशाली उभरता हुआ कुलीन परिवार बनाता है, जिसकी ख्याति पूरे उत्तर में गूंजती है और यहां तक कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। ग्रीन फैमिली का झंडा लहराती हुई गाड़ी सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ी। बिना किसी रुकावट के गाड़ी और पैदल चलने वाले लोग उसके आगे निकल गए। गाड़ी की खिड़की से मरे ग्रीन ने बाहर खड़े लोगों को देखा और पाया कि गाड़ी की ओर उनकी निगाहें श्रद्धा और भय से भरी हुई थीं। पहली बार ग्रीन नाम सुनकर झटका महसूस करते हुए मरे ग्रीन का दिल बेहद उलझन में था और उसने आखिरकार धीरे से कहा, ये पुनर्जन्म का तरीका सचमुच सही है। जब गाड़ी सैम स्टेवन पर रुकी तो मरे ग्रीन का मूड अभी भी कुछ जटिल था। गाड़ी से उतरकर मरे ग्रीन ने सैम स्टेवन की ओर देखा तो पाया कि यह 300 से 400 वर्ग मीटर में फैली एक 4 मंजिला इमारत थी। एक आम जिले में जहां इमारतें औसतन केवल 2 मंजिल की होती हैं, ये वास्तव में अलग, अत्यंत विशिष्ट दिखाई दे रही थी। ये फैटी सैम का टैवन था। फैटी सैम अर्ल ग्रीन के अधीन एक शूरवीर का बेटा था। उसके 2 बड़े भाई थे और उसका सबसे बड़ा भाई वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिससे परिवार की सीट जारी रखने का मौका मिला। इसलिए जब सैम वयस्क हुआ तो उसके पिता ने उसे कुछ पैसे और 3 दुकानें दी। उसने तीनों दुकानें बेच दी, कुछ दोस्त बनाए और यहां तक कि मरे ग्रीन से कुछ पैसे उधार लेकर यह इमारत खरीद ली और सैम स्टेवन की स्थापना की।
युवा मास्टर मरे, आपका स्वागत है। इससे पहले कि मरे ग्रीन सैम स्टेवन के सामने के दरवाजे से अंदर कदम रखते, एक दरबान की आंखें चमक उठी। वह कुछ तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया।
इससे पहले मरे ग्रीन को चाटुकारिताएं सख्त नापसंद थीं, लेकिन अपने सामने बैठे व्यक्ति की चमकदार मुस्कान, उत्साही लहजे और गंभीर आंखों को देखकर मरे ग्रीन को पता चला ये वास्तव में आनंददायक था। वह आदमी सैम कहाँ है? बॉस 4थी मंजिल पर आराम कर रहे हैं, मैं अभी जाकर उन्हें जगाता हूँ। मैं खुद ऊपर जाकर उसे ढूंढ लूंगा। मरे ग्रीन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर दरबान के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। अपनी याददाश्त के अनुसार वह ऊपर की ओर चला गया। उसके पीछे फुटमैन जिम ने एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे सेवारत दरबान की ओर फेंक दिया। युवा मास्टर मरे, आपकी उदारता और उदारता के लिए धन्यवाद। मैं आपके सुखद समय की कामना करता हूँ। सैम स्टेवन में 4 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर आम लोग और छोटे व्यापारी रहते थे, दूसरी मंजिल पर बड़े व्यापारी या कुलीन लोग रहते थे, तीसरी मंजिल पर कुलीन लोग रहते थे और 4थी मंजिल पर बैंक्वेट हॉल था, जहां भोज का आयोजन किया जाता था, और वहां कुछ लाउंज और सैम का कार्यालय भी था। इस समय दोपहर के 3 या 4 बजे के आसपास लोग एक के बाद एक आने लगे थे, ज्यादातर छोटे व्यापारी जो अपना काम या काम निपटाकर आराम करने आए थे। असली नाइट लाइफ अभी शुरू नहीं हुई थी। दस्तक, 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 कौन है भाई? दस्तक तेज हो गई और अंततः सैम की अधीर आवाज लाउंज से गूंजी। यह मैं हूँ। मरे ग्रीन की आवाज सुनते ही लाउंज में हलचल मच गई। न केवल सैम के कपड़े धुंधने की आवाज थी, बल्कि महिलाओं की आवाजें भी थीं।
इससे मरे ग्रीन को एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा था। उसने फैटी सैम से इतनी बेफिक्री से जीने की उम्मीद नहीं की थी। फिर ये याद करते हुए कि कैसे इन लोगों ने उसे धोखा दिया था और उस रात उसे कितनी परेशानी में डाला था, उसका चेहरा काला पड़ गया।
मुरे, थोड़ी देर के लिए ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं अभी उठा हूँ और अभी तक अपने कपड़े नहीं पहने हैं। मैं कपड़े पहनते ही तुम्हें ढूंढने ऑफिस आ जाऊंगा।
जितनी जल्दी हो सके। सैम के दफ्तर में घुसते हुए मरे ग्रीन ने एक मुलायम कालीन, एक बड़ी ठोस लकड़ी की मेज, शराब की अलमारियों की एक कतार, एक शीशे से बनी फर्श से छत तक की खिड़की और राक्षस की खाल से बना एक सोफा देखा। उस पर बैठकर उसे लगा कि यह ग्रीन कैसल में मौजूद सोफे से ज्यादा खराब नहीं है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे दूर से शहर की दीवार दिखाई दे रही थी। नज़ारा बहुत अच्छा था, हालांकि पहाड़ पर स्थित ग्रीन कैसल से पूरे शहर का शानदार नज़ारा नहीं दिखाई देता था, फिर भी यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करता था। कुछ ही देर बाद फैटी सैम, जो नाइटवियर पहने हुए था जिससे उसका पीला सफ़ेद पेट स्पष्ट रूप से दिख रहा था, ने दरवाजा खोला और कार्यालय में प्रवेश किया तथा मुरे ग्रीन का अभिवादन करते हुए हंसने लगा। आह, एक दुर्लभ अतिथि, एक दुर्लभ अतिथि। मरे, तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय कैसे है? कल रात एक भोज था और मैंने कुछ ज्यादा ही लोगों का मनोरंजन किया। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया और मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं जागा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम जागे हो, मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी एक और झपकी ली है। मरे ग्रीन के शब्दों में बारूद को महसूस करते हुए सैम ने मुस्कराते हुए मरे ग्रीन के बगल में बैठ गया, आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया और अश्लीलता से कहा, मुरे, अब तुम वयस्क हो गए हो। आज रात को मेरे पास एक भोज है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करूं? रूप और आकृतियां प्रथम श्रेणी की होने की गारंटी है। मरे ग्रीन ने अपनी आंखें सिकोड़कर सैम की ओर देखा और कहा, जरूर, जब तक तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मेरी माँ इस शराबखाने को बर्बाद कर देगी और मेरा बड़ा भाई तुम्हें फांसी पर लटका देगा और घोड़े की चाबुक से पीटेगा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर फैटी सैम कांप उठा, उसके दिल की गहराई से एक ठंडक सी उठ रही थी। मुरे ग्रीन के सामने काउंटेस पेनी कैंपबेल कितनी कोमल और देखभाल करने वाली थी, ये देखकर धोखा मत खाओ, एक दयालु माँ की तरह। लेकिन बाहर काउंटेस पेनी कैंपबेल पूरे ग्रीन टेरिटरी के लिए वित्त मंत्री थी, जो पूरे क्षेत्र की आर्थिक शक्ति को नियंत्रित करती थी। उनका एक भी शब्द सैम को दिवालिया बना सकता था और उसे बेघर कर सकता था। आह, क्या काउंटेस तुम्हारे वयस्क हो जाने के बाद भी तुम्हारे साथ इतनी सख्त है? क्या ये वाकई जरूरी है? लेनेस किंगडम में, जो कि वह वर्तमान में था, कुलीन उपाधियां सबसे बड़े बेटे को विरासत में मिलती थी। राज्य के कानून में एक पत्नीत्व की व्यवस्था थी जिसमें वैध सबसे बड़ा बेटा पहला वारिस होता था। अगर कोई बेटा नहीं था तो बेटी कुलीन उपाधि प्राप्त कर सकती थी। अगर कोई संतान नहीं थी तो भाई बहन क्रमशः विरासत प्राप्त कर सकते थे। इसलिए लेनेस किंगडम के कुलीन लोग अपने सबसे बड़े बेटों की खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे और परिवार की संपत्ति भी सबसे बड़े बेटे को विरासत में मिलेगी। युद्ध, आभा और जादू वाली इस दुनिया में ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे बड़ा बेटा अपनी नींव की रक्षा कर सके, उन सभी को युद्ध, आभा या जादू की खेती करने के लिए बनाया जाएगा। इस दुनिया में शोध के अनुसार 16 से 20 वर्ष की आयु युद्ध, आभा और जादू की साधना के लिए स्वर्णिम काल है। यदि कोई बच्चा शुद्ध शरीर बनाए रख सकता है तो साधना में अतिरिक्त लाभ होगा और साधना की गति और क्षमता आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक होगी जो शुद्ध शरीर बनाए नहीं रखते हैं। जहां तक शुद्ध शरीर का प्रश्न है तो ये बहुत सरल था। लड़के स्त्रियों के आकर्षण में लिप्त नहीं होते थे और लड़कियां पुरुषों के आकर्षण में लिप्त नहीं होती थीं। इसलिए कुलीन ज्येष्ठ पुत्रों की शादी की उम्र आमतौर पर 20 के आसपास होती थी। बेशक अगर उसके पास वास्तव में कोई साधना प्रतिभा नहीं थी तो उसे जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था और उसके वंशजों को सीधे साधना करवाई जाती थी। जहां तक सबसे बड़े बेटे के अलावा अन्य बच्चों की बात है, कुछ वयस्क होने के बाद बाहर चले जाते थे जबकि अन्य को उनके अभ्यास के लिए परिवार द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन साधना की तीव्रता सबसे बड़े बेटे जितनी नहीं थी और आवश्यकताएं उतनी सख्त नहीं थी, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे शुद्ध शरीर बनाए रखते हैं या नहीं। सैम के परिवार के लिए यह एक कुलीन परिवार था और सैम को शिक्षित करने में सक्षम था, लेकिन सैम ने वयस्क होने तक भी इंतजार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि वह 12 साल की उम्र में अपने परिवार की नौकरानी पर वयस्क हो गया था और वह इतनी साधारण उम्र में अब शुद्ध नहीं था, इसलिए सैम के परिवार ने उसे सीधे अपनी मर्जी से करने दिया और जैसे ही सैम वयस्क हुआ उन्होंने उसे परिवार से अलग कर दिया। हम्फ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं भविष्य में एक शक्तिशाली ग्रैंड मैच बनने जा रहा हूँ। माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए विशेष रूप से एक बड़ी राशि स्वीकृत की है और मुझे जादू सीखने के लिए एलिस अकादमी भेजने की योजना बनाई है। क्या एलिस अकादमी? मरे ग्रीन ने विजयी भाव से कहा, जबकि फैटी जिम एलिस अकादमी शब्द सुनकर मुरे ग्रीन को अविश्वसनीय भाव से देखते हुए स्तब्ध रह गया। ये सही है, यह एलिस अकादमी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उत्तर में नंबर 1 अकादमी, एलिस अकादमी। माँ मेरे लिए वहाँ जादू सीखने की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मोटे सैम ने अपने दिल में उठे सदमे को दबाने के लिए काली चाय का एक बड़ा घूंट लिया, फिर जीभ चटकाते हुए कहा, मुरे, यह अविश्वसनीय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एलिस अकादमी में अध्ययन कर पाओगे और वह भी जादू का अध्ययन कर पाओगे। मैंने सुना है कि एलिस मैजिक अकादमी के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस 300 स्वर्ण सिक्के है। 300 स्वर्ण सिक्के, यह मेरे छोटे से सराय के 1 या 2 साल के मुनाफे के बराबर है। इस दुनिया में मुख्य मुद्राएं सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के हैं। एक सोने के सिक्के को 100 चांदी के सिक्कों से बदला जा सकता है और एक चांदी के सिक्के को 100 तांबे के सिक्कों से बदला जा सकता है। इस प्रकार एक सोने के सिक्के को 10,000 तांबे के सिक्कों से बदला जा सकता है। एक तांबे के सिक्के की क्रय शक्ति पिछली दुनिया के 1 युआन से बहुत अलग नहीं है, इसलिए एक सोने का सिक्का पिछली दुनिया के 10,000 युआन के बराबर है। 300 सोने के सिक्के, 3 मिलियन, ये धनराशि छोटी नहीं है, चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, लेकिन यहाँ ये सिर्फ 1 साल की ट्यूशन है। एलिस अकादमी की शैक्षणिक प्रणाली 4 साल की है, इसलिए 4 साल के लिए ट्यूशन 1,200 सोने के सिक्के होंगे। हालांकि एक जादूगर के लिए ट्यूशन का भुगतान केवल उन्हें सबसे बुनियादी ज्ञान सीखने की अनुमति देता है। मजबूत बनने और शक्तिशाली व्यवसायों को अपनाने के लिए उन्हें अन्य ज्ञान सीखने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है, और यह खर्च का सबसे महंगा हिस्सा है। 1,200 स्वर्ण सिक्के हालांकि शक्तिशाली ग्रीन परिवार के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कोई छोटी राशि भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन परिवार बहुत तेजी से बड़ा था और अपेक्षाकृत विकृत था, जिसमें मजबूत लड़ाकू शक्ति थी लेकिन विशाल आधार और आर्थिक आधार का अभाव था। सैवेज ऑक्स के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रीन परिवार ने एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखी और उनके वार्षिक कर राजस्व और व्यावसायिक मुनाफे का कम से कम 70% सेना में निवेश किया गया। इसके अलावा ग्रीन क्षेत्र के निर्माण, युद्ध पुरस्कारों का भुगतान, क्षेत्र में प्रतिभाओं की खेती और अन्य खर्चों की एक श्रृंखला के लिए खर्च किया गया। अंत में 10वां हिस्सा भी बचा पाना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। अगर उन्हें लगातार युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता तो उन्हें अपनी पुरानी बचत पर निर्भर रहना पड़ता या कर्ज में रहना पड़ता। इसलिए सैम बहुत हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काउंटेस पेनी कैंपबेल एलिस अकादमी में जादू की पढ़ाई के लिए मरे ग्रीन की व्यवस्था करेगी। भले ही एलिस अकादमी की शिक्षण क्षमता बहुत मजबूत थी और सामान्य रूप से स्नातक करने वाले छात्र इंटरमीडिएट मैच के स्तर तक पहुंच सकते थे, फिर भी उसे लगा कि वे 10 साल की मैजिक अकादमियां अधिक लागत प्रभावी थीं। मुझे एलिस अकादमी में जादू सीखने का मौका मिलने पर भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैं कुछ ही दिनों में अपनी पढ़ाई के लिए निकल जाऊंगा। आज मैं आप लोगों से मिलना चाहता था। अगली बार हम साल के अंत में मिलेंगे, मरे ग्रीन ने भी हैरानी भरे अंदाज में कहा। सैम ने अपनी छाती थपथपाई और जवाब दिया, मैं आज रात सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। हे, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वयस्कता समारोह की उस रात के बाद मरे ग्रीन को सैम के वादों पर कोई भरोसा नहीं रह गया था। यदि ये कुछ बदमाश दोस्त उन कुछ साथियों में से न होते जिनसे ये संस्था अपेक्षाकृत परिचित थी, तो वह विशेष रूप से अलविदा कहने के लिए नहीं आता। कुछ दिनों तक ग्रीन सिटी में घूमने और इस अलग दुनिया का व्यक्तिगत अनुभव लेने के बाद उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से आधिकारिक तौर पर विदाई ली। फैटी सैम की विशेष व्यवस्था के तहत वह फिर से एंजल से मिला, जिसने पहले उसे नशे में धुत कर दिया था। आमने सामने की शराब पीने की एक बैठक में वह एक बार फिर एंजल के नशे में धुत हो गया। जवाब में मरे ग्रीन ने आक्रोशपूर्वक घोषणा की कि चूंकि उनका शरीर अभी परिपक्व हुआ है और उन्होंने पहले शायद ही कभी शराब पी हो, इसलिए वे स्कूल से लौटने पर एंजल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वह राइन ग्रीन के पीछे पीछे घुड़सवार सेना की टुकड़ी के साथ बिना किसी घटना के एलिस सिटी पहुंच गए। उन्होंने एलिस अकादमी में पंजीकरण कराया और सफलतापूर्वक दाखिला लिया। मरे ग्रीन, यह आपकी छात्र आईडी, छात्रावास की चाबी और बुनियादी पाठ्यक्रम अनुसूची है। कृपया इन्हें सुरक्षित रखें। स्कूल में कई चीजों के लिए आपकी छात्र आईडी की आवश्यकता होती है। ये छात्र आईडी बहुत कीमती है, जिसे सोने, मिथ्रिल और जादुई लोहे से तैयार किया गया है, और इस पर मौजूद जादुई सरणी अकादमी की बड़ी जादुई सरणी से जुड़ी हुई है। यदि खो गया है तो कृपया पुराने कार्ड को अमान्य करने और इसे 10 स्वर्ण सिक्कों के मूल्य पर एक नए कार्ड से बदलने के लिए तुरंत शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में आएं। किसी भी अन्य प्रश्न के लिए आप फ्रंट डेस्क पर सेवा कर्मचारियों से परामर्श कर सकते हैं। अगले छात्र, कृपया भुगतान करने के लिए आएं। मरे ग्रीन ने ग्रे कार्ड लिया। 5 अक्षर एलिस अकादमी सामने आए। उसके नीचे मैजिक अकादमी लिखा था, उसके बाद उसका नाम मरे ग्रीन लिखा था। अंततः नामांकन की तारीख थी, ईश्वर रहस्योद्घाटन कैलेंडर 4255, 1 मार्च और कार्ड के पीछे उसका जादुई चित्र था। नॉर्थलैंड की सबसे प्रमुख अकादमी एलिस अकादमी नॉर्थलैंड के ग्रैंड ड्यूक और नियंत्रक एलिस परिवार द्वारा स्थापित की गई थी। ये 500 से ज्यादा सालों से स्थापित है और योद्धाओं और जादूगरों को प्रशिक्षित करने में माहिर है। मूल रूप से नॉर्थलैंड के सभी कुलीन परिवार, अगर उनके पास साधन है, तो अपने बच्चों को अध्ययन के लिए इस अकादमी में भेजते हैं। यहाँ कोई न केवल व्यवस्थित ज्ञान सीख सकता है, बल्कि अपने नेटवर्क का विस्तार भी कर सकता है। अर्ल के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा राइन ग्रीन ने एलिस अकादमी की योद्धा शाखा में भी अध्ययन किया। इस छात्र पहचान पत्र को, जिसकी कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं थी, सावधानी पूर्वक एक तरफ रखने के बाद मरे ने अपने बगल में खड़े राइन ग्रीन की ओर देखा। मैजिक अकादमी छात्रावास भवन कहाँ है? मरे की तुलना में, जो एक नया छात्र था, राइन अब सेमेस्टर की शुरुआत के बाद तीसरे वर्ष का वरिष्ठ छात्र था, जिसने अपने शैक्षणिक जीवन का आधे से अधिक हिस्सा पूरा कर लिया था। मैं मैजिक अकादमी में कई बार गया हूँ, मेरे साथ आओ। एलिस अकादमी बहुत बड़ी है, जो लगभग 10,000 एकड़ में फैली हुई है, जो उनकी पिछली दुनिया के कई विश्वविद्यालयों से भी बड़ी है। हालांकि एलिस अकादमी में केवल 5,000 से अधिक आधिकारिक छात्र हैं, और संकाय, कर्मचारी, गार्ड और नौकरों सहित कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं है, जिससे यह एक विरल आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है। मैजिक अकादमी, जिसमें मरे ग्रीन प्रवेश करने वाले थे, में चारों कक्षाओं में 1,000 से अधिक छात्र नहीं थे, लेकिन एलिस अकादमी के एक तिहाई क्षेत्र पर इसका कब्जा था। इसलिए नामांकन के दिन भी मैजिक अकादमी में ज्यादा लोग नहीं थे, और बहुत कम लोग घूमने के लिए बाहर आए। अपने बड़े भाई राइन के साथ मैजिक अकादमी में जाने पर सबसे पहले सैकड़ों ऊंचे मैजिक टावर नजर आए। इन मैजिक टावरों की ऊंचाई अलग अलग थी, लेकिन सबसे छोटा टावर 50 मीटर ऊंचा था और सबसे ऊंचा टावर कई सौ मीटर ऊंचा था। अपनी पिछली दुनिया में इंटरनेट के प्रभाव का अनुभव करने के बाद मरे ग्रीन के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने आधुनिक दुनिया में कई गगनचुंबी इमारतें देखी हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कई सौ मीटर ऊंची मीनार के साथ उनका पहला वास्तविक सामना इस पिछड़ी दुनिया में होगा, जो केवल पत्थरों को ढेर करना जानती थी। कई सौ मीटर ऊंचे टॉवर के नीचे खड़े होकर मरे की पहली प्रतिक्रिया तुच्छता की भावना थी। ऊंचे टॉवर के नीचे वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। हे भगवान, क्या ये टावर इतना ऊंचा है? स्टेनली एलिस टॉवर का निर्माण एलिस ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड मैजिस्टर स्टेनली एलिस ने संयुक्त रूप से 500 साल पहले 20 वर्षों में किया था। जिस दिन स्टेनली एलिस टॉवर का निर्माण हुआ, उसी दिन एलिस अकादमी की स्थापना भी हुई, जिसमें ग्रैंड मैजिस्टर स्टेनली एलिस एलिस अकादमी के पहले डीन के रूप में कार्यरत थे। राइन ग्रीन एक टूर गाइड के रूप में कार्य करते हुए अपना सामान्य प्रदर्शन शुरू कर दिया, चलते चलते चीजों को समझाते हुए, और जल्द ही एक 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। विशाल मैजिक टावरों की तुलना में ये 3 मंजिला इमारत केवल 40 मीटर ऊंची थी, लेकिन इसका निर्मित क्षेत्र अत्यंत विशाल था। ये मैजिक अकादमी का शिक्षण भवन था। यहाँ थे शिक्षण भवन से गुजरते हुए मरे ग्रीन ने 5-5 मंजिला इमारतें देखी। ये मैजिक डॉर्मेट्री इमारतें थीं, और मरे ने इन 5 डॉर्मेट्री इमारतों के इर्द गिर्द कई अलग अलग छोटे छोटे महल भी देखे। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और रहस्य छात्रावास भवन। आपका छात्रावास जल भवन में है। राइन मरे ने पानी की तरह नीले रंग में रंगी एक छात्रावास की इमारत की ओर इशारा किया। दोनों भाइयों ने छात्रावास के गेट हाउस में पंजीकरण कराया, और छात्रावास के पर्यवेक्षक ने मरे ग्रीन की छात्र आईडी मैजिक एरे में दर्ज की। उन्होंने उसे अपनी छात्र आईडी सुरक्षित रखने की भी सलाह दी, अन्यथा वह छात्रावास भवन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास नहीं कर सकेगा। शिक्षक के निर्देशों को सुनकर मरे ग्रीन ने बार बार सिर हिलाया। शिक्षक को अलविदा कहने के बाद उसने अपने छात्रावास की चाबी पर लगे टैग को देखा। मैजिक डॉर्मेट्री पानी 305। टैग के मार्गदर्शन का पालन करते हुए मरे ग्रीन ने शीघ्र ही अपना छात्रावास ढूंढ लिया। डॉर्मेट्री का दरवाजा खोलते ही उसे आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में एक सिंगल कमरा था, जिसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक निजी बाथरूम था। डॉर्मेट्री में मौजूद बहुत से सामान शानदार और आरामदायक थे, जैसा कि एलिस अकादमी से उम्मीद की जाती है, बहुत अमीर और असाधारण। हर छात्र को इतना शानदार सिंगल रूम मिलता है, इसकी कीमत जरूर ज्यादा होगी। ये सुनकर राइन ग्रीन ने मरे की ओर आंखें घुमाई और पलटकर कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस छात्रावास की कीमत 30 सोने के सिक्के प्रति वर्ष है। जादूगर वाकई लोगों को लूटने से ज्यादा तेजी से पैसा कमाते हैं। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह 30 स्वर्ण मुद्राएं, हे भगवान, इतनी महंगी। एक वर्ष, एक छात्रावास के लिए 30 सोने के सिक्के, 1,000 लोगों के लिए 30,000 सोने के सिक्के, 300 मिलियन तांबे के सिक्के होंगे। सिर्फ मैजिक अकादमी के लिए छात्रावास की फीस ही साल में 3 छोटे लक्ष्य होंगे। डकैती भी इतनी तेज नहीं होती है ना? डकैती इतनी तेज नहीं है, लेकिन जादूगर को लूटना और भी तेज हो सकता है। तो छोटे मरे, हमें निराश मत करो, एक शक्तिशाली जादूगर बनने का प्रयास करो। यदि आप एक पोषण मास्टर बन जाते हैं तो आप जादूगरों के बीच एक बड़ी मोटी भीड़ बन जाएंगे, बहुत अमीर। राइन ने मरे को चमकती आंखों से देखा, जिससे मरे के सिर में झुनझुनी होने लगी। क्या हो रहा है? हम खून के रिश्तेदार हैं, भाई जैसे करीबी। वह भविष्य में मुझे लूटने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगली सुबह नहा धोकर और छात्रावास क्षेत्र के कैफेटेरिया में नाश्ता करने के बाद मरे ग्रीन खुशी खुशी शिक्षण भवन की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने देखा कि कई सहपाठी भी छात्रावास भवन छोड़कर शिक्षण भवन की ओर जाने लगे हैं। व्यस्त छात्रों ने शांत मैजिक अकादमी में जीवन का एक स्पर्श ला दिया। बिना रुके मरे, जिसने बचपन से ही अर्ल से शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जल्दी से शिक्षण भवन में पहुंच गया। गार्ड के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसने पाठ्यक्रम अनुसूची पर लिखा पता पाया ध्यान कक्षा एक। कक्षा में प्रवेश करने पर मरे ने पाया कि उसमें पारंपरिक डेस्क और कुर्सियां नहीं थीं, बल्कि एक बड़ा खुला स्थान था। जमीन पर लकड़ी के बोर्ड बिछाए गए थे और उन पर 20 कुशन बड़े करीने से सजाए गए थे। कक्षा में पहले से ही लगभग 10 छात्र क्रॉस लेग बैठे हुए थे। उन्होंने जल्दी से एक कुर्सी चुनी, चुपचाप एक खाली कुर्सी के पास चले गए, पैर मोड़कर बैठ गए और अन्य छात्रों के साथ कक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद छात्र लगातार कक्षा में घुस आए और सभी 20 कुशन भर गए। शायद इसलिए क्योंकि यह सेमेस्टर की पहली क्लास थी, इसलिए कोई नहीं बोला। वे सभी गंभीर और शांत होकर क्रॉस लेग बैठे थे और क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, जैसे ही कक्षा की घंटी बजी, एक जादुई पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का जादूगर अचानक दरवाजे से कक्षा में प्रवेश कर गया। हाँ, वह तैरकर अंदर आया। मरे ग्रीन को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं और उसने गलत देखा है। हालांकि जब उसने जादूगर के पैरों को जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर दरवाजे से लेकर पोडियम तक तैरते हुए देखा, मरे ग्रीन को पता था कि यह जादू है, अद्भुत जादू। आज आखिरकार उसने अपने चेहरे की एक झलक उसे दिखानी शुरू कर दी, लेकिन उसके आकर्षण की यह छोटी सी झलक भी उसे मोहित करने लगी थी। हेलो शिक्षक, यद्यपि किसी ने भी खड़े हो जाओ नहीं कहा, फिर भी सभी छात्र जो पैर मोड़कर बैठे थे एक साथ खड़े हो गए और जादू शिक्षक को नमस्कार करने के लिए झुके। मध्यम आयु वर्ग के जादू शिक्षक की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, कृपया बैठो। मेरा नाम लिंडेन बिल है और मैं आपका परिचयात्मक ध्यान शिक्षक हूँ। आप मुझे शिक्षक लिंडेन कह सकते हैं। अब मैं रोल कॉल करूंगा ताकि हर कोई एक दूसरे को जान सके। जैसे ही वह बोल रहा था, टीचर लिंडेन का तैरता हुआ शरीर धीरे धीरे नीचे उतरा और वह पोडियम पर कुशन पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसने अपनी प्रेग्नेंट से रोल कॉल शीट निकाली और नाम पुकारना शुरू कर दिया। लिवेई एलिस, यहाँ। लिवेई एलिस नामक छात्र ने खड़े होकर अध्यापक लिंडेन और अपने सहपाठियों का अभिवादन किया। एलिस, यह उपनाम सुनकर मरे ग्रीन चौंक गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह एलिस परिवार का सदस्य है, लेकिन फिर उन्होंने उसकी शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान दिया। उसकी पुतलियां सफेद रंग की काली थीं, उसके बाल काले थे और उसकी त्वचा पीली थी। एलिस परिवार की विशेषताएं बहुत स्पष्ट नहीं थीं। मरे ग्रीन को एहसास हुआ कि इस लिवेई एलिस का एलिस परिवार से खून का रिश्ता पहले से ही काफी दूर का था। वह संभवतः एलिस परिवार का दूर का रिश्तेदार था और उसने केवल उपनाम एलिस ही रखा था। मार्च क्लेमेंस, यहाँ। सभी को नमस्कार, मैं मार्च क्लेमेंस हूँ। एक गौरवान्वित सुंदर युवती चुपचाप खड़ी हुई और मुस्कुराहट के साथ वहां उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। क्लेमेंस परिवार उत्तर के चार महान मार्क्विस परिवारों में से एक। इन सहपाठियों को एक एक करके उत्तर देते देखना, सभी के नाम और उपनाम बताते हुए, ये दर्शाता था कि इस कक्षा में प्रत्येक बच्चा एक नेक बच्चा था। कुल 20 लोग थे और हाजिरी जल्दी ही खत्म हो गई। शिक्षक लिंडेन ने हाजिरी शीट हटा दी और सभी को शांति से देखा। एलिस अकादमी और मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक साथ ही विनम्रतापूर्वक तालियां बजने लगीं और जल्दी ही शांत हो गईं। लिंडेन बिल ने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। कक्षा के अनुशासन और अखंडता को बनाए रखने के लिए मेरी कक्षा में कुछ नियम हैं। नियम सरल हैं, अनुपस्थित न रहें, देर से न आएं, जल्दी न निकलें, परेशानी न करें, कक्षा में शांति बनाए रखें। अगर आपके पास कुछ है तो इसकी रिपोर्ट करें। अगर आपके पास कोई वैध कारण है तो आप छुट्टी मांग सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर बाद में और जरूरत पड़ी तो हम उन्हें जोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इस कक्षा में लंबे समय तक नहीं मिलेंगे। शिक्षक लिंडेन ने ध्यान की प्रारंभिक कक्षा सिखाई। जब तक कोई जादुई शक्ति विकसित करता है, तब तक उसे इस कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी ने दो बार हंसकर शिक्षक का आशीर्वाद स्वीकार किया। मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वह एलिस अकादमी मानक जादू ध्यान विधि है। इस ध्यान विधि को एलिस अकादमी के पहले प्रधानाध्यापक स्टेनली एलिस ने बनाया था और एलिस अकादमी के विभिन्न जादू संतों द्वारा इसे परिष्कृत और पूरक बनाया गया था। इसे 5 खंडों में विभाजित किया गया है और इसे लेवल 5 ग्रैंड मैच तक विकसित किया जा सकता है। अब आप जो सीखने जा रहे हैं वह पहला खंड है। यह आपको ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने, आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करने, आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने और जादुई शक्ति विकसित करने की अनुमति दे सकता है। यह एक बहुत ही बुनियादी ध्यान पद्धति है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेगा। ये सुनकर कि लिंडेन बिल ध्यान विधि सिखाने वाले हैं, मरे ग्रीन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने चमकती आंखों से लिंडेन बिल को देखा। सभी की उम्मीद भरी निगाहों का सामना करते हुए लिंडेन बिल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे मुद्दे पर आ गए। ठीक है, आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, मैं आपको ध्यान विधि सिखाना शुरू करूंगा। हम क्या इसके बाद कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है? क्या 300 स्वर्ण सिक्कों की ट्यूशन फीस वास्तव में सिर्फ ट्यूशन फीस है जिसमें पाठ्य पुस्तक शुल्क शामिल नहीं है? यद्यपि उसे कुछ संदेह था, फिर भी मरे ग्रीन ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी छात्रों को अपनी आंखें बंद करते देख लिंडन बिल ने गहरी सांस ली और उसके शरीर के भीतर की जादुई शक्ति उसके नीचे कुशन की ओर बढ़ गई। जल्द ही पोडियम पर रहस्यमय पैटर्न चमक उठे, वे मैजिक एरे पैटर्न थे। जैसे जैसे लिंडन बिल लगातार जादुई शक्ति डाल रहा था, जादुई सरनी के पैटर्न पानी की तरह नीचे की ओर बह रहे थे, एक के बाद एक छात्रों के कुशन से गुजरते हुए अंततः पूरे मैदान को कवर कर रहे थे और एक पूर्ण जादुई सरनी का निर्माण कर रहे थे। एकाग्रता जादू सरनी सक्रिय। मरे ग्रीन ने आंखें बंद कर ली और सिर में ठंडक महसूस की, मानो उसने बर्फ को छू लिया हो। उसने सहज रूप से आश्चर्य से एक गहरी सांस ली और अचानक अपनी आंखें खोली। वहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने अचानक आई ठंडक को महसूस किया तथा जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आश्चर्यचकित करने वाली आवाजें उठने और गिरने लगी। फिर उन्होंने देखा कि जमीन जादुई सरनी पैटर्न से ढकी हुई है।
यह एक जादुई सरनी है, चुप रहो, तुम सब अपनी आंखें बंद करो।
इससे पहले कि सभी अपनी बात जारी रख पाते, लिंडन बिल ने तुरंत उन्हें बीच में रोक दिया। शिक्षक का आदेश सुनकर सभी अपनी जिज्ञासा को दबा सकते थे और अपनी आंखें फिर से बंद कर सकते थे। ठंडक का एहसास उन्हें और भी ज्यादा सजग कर रहा था। जल्द ही टीचर लिंडन की आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज तेज नहीं थी बल्कि कुछ अस्पष्ट थी, जैसे कि वह उसके कान में फुसफुसा रहा हो, जिससे मरे ग्रीन को काफी असहज महसूस हुआ। लगभग 10 मिनट बाद मरे ग्रीन को अंततः समझ में आ गया कि शिक्षक लिंडेन ध्यान विधि का पाठ कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल कुछ वाक्यांश ही याद थे। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलने वाला था और अध्यापक लिंडेन से याद करने के लिए पाठ्य पुस्तक मांगने की तैयारी कर रहा था, अध्यापक लिंडेन की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी और उसने दूसरा पाठ शुरू कर दिया। जब ध्यान विधि का दूसरा पाठ शुरू हुआ तो मरे ग्रीन ने महसूस किया कि शिक्षक लिंडेन की आवाज बहुत ऊंची और स्पष्ट थी, जिससे वह ध्यान विधि का अधिकांश भाग स्पष्ट रूप से सुन सके। हालांकि वह सिर्फ कुशन पर क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था और ध्यान विधि सुन रहा था, मरे को लगा कि उसकी आत्मा विशेष रूप से उत्साहित थी, यहां तक कि उल्लासित भी। सौभाग्य से एकाग्रता जादू सरनी के दमन के साथ वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और ध्यान जारी रखने में सक्षम था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह व्यायाम कर रहे हों और वह कुछ थके हुए भी थे। जब ध्यान विधि का तीसरा पाठ शुरू हुआ तो मरे ग्रीन को लगा कि शिक्षक लिंडेन की आवाज सामान्य भाषण की तरह थी और वह पहले से ही उनके द्वारा कहे गए हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। चौथी बार उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। पांचवीं बार मरे ग्रीन को लगा कि टीचर लिंडेन की आवाज छेनी की तरह थी और उसका अपना सिर एक पत्थर की पटिया था। छेनी ने पत्थर की पटिया पर एक के बाद एक शब्द उकेरे और उसने पूरी ध्यान विधि को पूरी तरह से याद कर लिया था। बार बार एक बार फिर और फिर। वह नहीं जानता था कि ऐसा कितनी बार हुआ था, लेकिन मरे ग्रीन न केवल पूरी ध्यान विधि को उल्टा सुना सकता था बल्कि उसने ध्यान विधि की साधना पद्धति के अनुसार ध्यान करना भी शुरू कर दिया था। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। जब छुट्टी की घंटी बजी, मरे को पहले ही यह याद नहीं रहा कि उसने कितनी बार ध्यान विधि सुनी थी। उसे चक्कर आ रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो रही थी और उसके अंग कमजोर हो रहे थे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास के बाद ध्यान विधि की समीक्षा करना न भूलें और खुद ध्यान करने की कोशिश करें। जो भी सवाल आपको समझ में न आए उन्हें लिख लें और अगली क्लास में पूछें। ठीक है, कक्षा समाप्त। अलविदा गुरुजी। कक्षा समाप्त शब्द सुनकर हालांकि मरे ग्रीन का शरीर बहुत थका हुआ था, वह सहज रूप से उठ खड़ा हुआ और लिंडन बिल को झुककर विदाई दी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि केवल वह ही खड़ा हुआ था, जबकि बाकी सभी अभी भी अपने तकियों पर झुके हुए थे। मरे ग्रीन कुछ हद तक अचंभित था। मरे ग्रीन को अकेले खड़ा देखकर लिंडन बिल के शांत चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने मरे ग्रीन को ध्यान से देखा और अंत में एक मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया और धीरे से मरे ग्रीन से कहा, आपकी आत्मा अच्छी है। कक्षा के बाद ध्यान विधि का पाठ करना याद रखें और अपने आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे मैजिक टॉवर में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद शिक्षक। यद्यपि मरे ग्रीन को यह समझ में नहीं आया कि अध्यापक लिंडेन बिल उनके साथ इतना विनम्र क्यों थे तथा उन्हें विशेष ध्यान क्यों दे रहे थे, यह एक अच्छी बात थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया।